सबको पीछे तक आवाज ठीक आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बातें तो बाद में करेंगे, बहुत सारी अल्लाह ने चाहा, जो भी आपके जहनों में सवाल होंगे या कोई भी। लेकिन अभी हमने चूंकि तिलावत सुनी है, तो हम आज हमारा जो आज का मौजू है कि जिंदगी एक इम्तिहान है, तो आज थोड़ा सा आजमाइशों की हकीकत को देखेंगे। ठीक है, देखना चाहते हैं हम पे मुसीबतें क्यों आती हैं, आजमाइशें क्या हैं, किस तरह की बातें। इंशाल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और इसको बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में हम लेंगे, क्योंकि ये एक हमारा रेगुलर दर्स है, कोई क्लासरूम तो नहीं है। लेकिन यह है कि जो भी मौजू है, इसको सुनते वक्त मुझे ये यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल उभरेंगे, क्योंकि कौन है जो ये ना सोचे कि मेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं है या मैं आजमाया नहीं गया हूँ। तो उसका तरीका ये है कि उसको अपने पास दर्ज कर लें, पेपर पेन नहीं भी है तो जहन में रख लीजिए। इंशाल्लाह हम अपनी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स और जो भी चीज़ें उसको लेंगे। थोड़ा सा अगर इसको देख लें, जितना ये ऊंचा होगा इसकी स्पीड है पीछे, थोड़ी सी इंक्रीज कर दें, क्योंकि मैं जितना आहिस्ता बोलूंगी इंशाल्लाह उतनी देर तक बोल सकूंगी। इंशाल्लाह चलो, ऑनलाइन पे एक दफ़ा बस डबल चेक कर लीजिए कि आवाज़ क्लियर है। लिख कर मेन रूम में बता दीजिए प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह। फाउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। क़ाला अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس نقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمرات والثمرات وبشر الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अभी आपके सामने सूरत बकरा की आयत नंबर 155 यानी 155 का कुछ हिस्सा मैंने पढ़ा। सिर्फ इसी एक हिस्से में नहीं, बल्कि अगर आप कुरान पाक में लफ्ज़ बला, जिसको उर्दू में हम मुसीबत कहते हैं, आजमाइश कहते हैं, अगर आप देखें तो आपको तकरीबन 35 आयत ऐसी मिलेंगी जिसमें 38 टाइम्स यानी 35, सिर्फ इस सोच के साथ कि शायद जो आजमाइश और मुसीबत के मामले में मेरा नुक्ता नजर है वो इतना मुख्तसर है, वो खुल जाए। क्योंकि आजमाइशें मुसीबतें मुख्तलिफ तरह की होती हैं और मुख्तलिफ तरह के हालात में आती हैं। लेकिन चंद आयतों के नंबर कम से कम थोड़े से नोट कीजिए, कल किसी से अगर आप इस मौजू पे बात करना चाहें तो बता सके कि कुरान पाक के इन हिस्सों की तफसीर सुन लो। और इस वक्त इन आयात को बताने का मकसद एक ये भी है कि यहाँ तो हम सिर्फ एक जनरल टॉक करेंगे, लेकिन जब भी आप किसी बहन को, दोस्त को, किसी भाई को किसी किस्म की आजमाइश में देखें तो इन आयतों की तफसीर सुनना रिकमेंड कर दें। क्योंकि इस वक्त हम तफसीर तो नहीं करेंगे, लेकिन जब हम कुरान पाक की तफसीर एक क्लासरूम में बैठ के करते हैं, सामने हमारे स्टूडेंट्स भी होते हैं और मकसद भी होता है कि उनका इल्म पुख्ता हो जाए, तो फिर इन हिस्सों को हम वहां ज्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सूरत बकरा ही की आयत 49 है, जिसमें पीछे से फिरौन के आजमाने का जिक्र है। और मैं इसको अपने लफ्जों में थोड़ा इसलिए भी बताऊंगी ताकि आपको आज आजमाइशों के मुख्तलिफ रंग भी दिखें। हमारे जहन में आजमाइश और मुसीबत का एक बड़ा नपतुला सा मामला है, कोई फौत हो गया तो मुसीबत आ गई, कोई कारोबार खत्म हो गया तो मुसीबत आ गई। लेकिन इंशाल्लाह आज इन सारी आयतों को एक साथ सुनने से आपको फायदा क्या होगा कि जो आजमाइशें आती हैं उसको देख सकेंगे। तो सबसे पहली आजमाइश जिसका जिक्र हम पढ़ेंगे आज के बाद में, वो है सूरत बकरा की आयत 149 है। व इस नज्जे ना कुमिन आली फिरऔन यसूमूनकुम सू अल अज़ाब सू अल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और जब हमने तुमको आले फिरौन से निजात दी, जो तुमको बुरा अजाब पहुंचाता था, तुम्हारे बेटों को ज़िबह कर देता था और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ता था, और बेशक इसमें बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से। मैं इस मौजू पे बात बहुत कम करती हूँ, लेकिन कुरान पाक की तरतीब पे हैरत की बात है। कि कुरान पाक में सबसे पहले जिस आजमाइश जिस मुसीबत का जिक्र है वो बुरे हुक्मरानों की आजमाइश है। फिरौन एक सिंबल है। बुरे हुक्मरान होने का जिसने अपने दौर के मुझे दिख रहा कि जिसने ये ना सुना हो कि फिरौन बनी इसराइल यानी उस दौर के मुसलमानों के बच्चों को कत्ल करवाता था। लेकिन आज हम इस टॉपिक की आगाज में पहली आजमाइश या मुसीबत जो किसी कौम पे या किसी फर्द पे पड़ती है उसको देख लेते हैं, और वो तकलीफ है बुरे हुक्मरानों की। साथ ही साथ अपने लिए अमली रहनुमाई भी लेते जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जब हम जमा करते हैं तो उससे जो बात हमारे सामने आती है उसका खुलासा क्या है? आमालुकुम ओ मालुकुम, दो लफ्ज़ हैं सिर्फ, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हुक्मरान हैं। जैसे किसी कौम के अमल होते हैं वैसे हुक्मरान उसको नसीब होते हैं। बिल्कुल इस एक हदीस की अगर आप शरह पे जाएं तो बहुत मुख्तलिफ एंगल आपको इसके दिखेंगे, लेकिन यहां बस इतना समझ लीजिए कि कोई कौम जिस तरह के अमल करती है अल्लाह ताला उसको उसी किस्म के हुक्मरान अता करता है। हत्ता कि एक रिवायत में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर अल्लाह सुब्हान तआला से ये बात पूछी थी कि अल्लाह ताला आप तो आसमान में मैं जमीन पे हूँ, मुझे कैसे पता चले कि आप हमसे खुश हैं कि नाराज हैं? पहली तो बात देखिए कि ये सोच किसके जहन में आती है जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत होती है। हम उन्हीं के बारे में कॉन्शियस होते हैं ना जिनसे हम प्यार करते हैं कि क्या वो हमसे खुश हैं कि नहीं। तो मूसा को चूंकि अल्लाह ताला से मोहब्बत थी तो ये पूछा, तो उस पे अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था कि मूसा मेरी तुम लोगों पर रजा की अलामत क्या है कि जब मैं तुम लोगों से खुश होता हूँ तो तुम पे अच्छे लोगों को हुक्मरान बना देता हूँ, और जब तुमसे नाराज होता हूँ तो तुम पे बुरे लोगों को हुक्मरान बनाता हूँ। अगर आज के दौर के जो निज़ाम हुकूमत है उसको भी सामने रख लें जिसको आज बहुत ही मारूफ तरीके से हम लफ्ज़ जमहूरियत या डेमोक्रेसी से जानते हैं, तो ये हदीस आपको 100% सच दिखेगी, क्योंकि आज के दौर में तो अवाम ही हुक्मरानों को चुनती है। समझ रहे हैं? तो जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। अवाम पढ़ी लिखी होगी, हुक्मरान भी पढ़े लिखे होंगे, सोच वाले होंगे। अवाम अगर नेक होगी तो हुक्मरान भी नेक होंगे। तो पहली बात जो आज की इस गुफ्तगू से आप इस मौजू पे समझ जाएं कि हुक्मरानों को बुरा कहने की बजाय और उनके कुछ नहीं पीछे थे और उनके कार्टून बनाने और उनकी इतनी बुरी तस्वीरें पेश करके मीडिया और नेट के थ्रू देने की बजाय हम सब अपने आमाल को देखें कि हमारे आमाल कैसे हैं। आज के दौर में जो हमारे खास तौर पे पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा हम देखते हैं मर्दों का, क्या आप तो मुझे लगता है बच्चों और औरतों का भी फेवरेट टॉपिक जो है वो हुक्मरान है और फारिग वक्त में उनकी बातें और उनकी गुफ्तगू है। देखिए सिर्फ इतनी सी बात समझ लें, पहली बात है कि अभी खबरें सुनी ना पड़ी और कुछ कुछ लोगों के मुंह से बातें सुन के लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा इर्द गिर्द। इसलिए मेरी अपनी पर्सनल किसी के बारे में कोई राय नहीं है, यानी जो बात मैं कहूँ इसको आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है दौरे हाजिर में उसके ऊपर कयास ना कीजिएगा। लेकिन मैंने जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल से सीखी वो क्या सीखी कि गीबत आम फर्द की भी बुरी है ना तो हुक्मरान की भी बुरी है। स्कैंडलिज्म अगर किसी गुलकार और अदाकार का बुरा है ना तो वो सियासतदानों का भी बुरा है। अगर किसी ने किसी को बड़ा मान लिया तो फिर उसके लिए अल्लाह का हुक्म क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। सूरह निसा की इस आयत की तफसीर जरूर सुनिए, मुझे नंबर याद नहीं है, अगर चाहेंगे तो एंड पे आपको चेक करके बताया जाएगा। आप इसकी तफसीर बल्कि जरूर सुने, सबीलुल जन्ना जन्ना के लिंक पे जाके सुन लें तो ज्यादा डिटेल मिल जाएगी कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद उलुल अम्र कौन होते हैं। दुनियावी मामलात में जो लोग होते हैं उसमें हुक्मरान भी आते हैं। जब आपने किसी को बड़ा मान लिया तो फिर उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। हाँ जब वो आपको अल्लाह और उससे मैनेज करके उनको समझा दें और अगर वो नहीं समझते तो बदल दीजिए, लेकिन कहीं भी इस बात की इजाजत नहीं है। क्या क्या आप हुक्मरानों की बुराइयों को टोकन बनाते हुए कुरान में आप में से किसी को मेरे से ज्यादा याद हो तो रिमाइंड करवा सकते हैं? उन्होंने कहा था कि किसी की गीबत करते हुए मैं इसलिए डरता हूँ कि मेरे उसकी गीबत करने से उसका गुना छोटा और मेरे गुना ज्यादा ना हो जाए। बस लोगों के गुना, और मैं अपने तौर पे लोगों के रवैये को देखकर कहती हूँ अक्सर कि कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो, इतने लोग जब उसकी बुराइयां कर रहे हैं, हो सकता है कल यही उसके गुनाहों का कफारा बन जाए। खामोश, न जा मन समत। एक मोमिन के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि वो बेकार लतीफे पढ़े और उसको आगे बेसोचे समझे डाल दें। अभी इत्तफाक से आज कई दिन के बाद जरा थोड़ा सा सुबह बैठ के फारिग हुई तो मैंने वैसे चेक किए तो किसी ने आज हमारे अपने मुल्कों के हुक्मरान, जिसको आप लीडर कह लें बहुत बड़े, उनकी तस्वीर एक औरत के रूप में पेश की हुई थी, दुल्हन बनी हुई और उसके नीचे अजीबो गरीब से कमेंट्स थे। यकीन करे कि मेरा दिल करे कि मैं फूट फूट, ने क्या सोच के थे तस्वीर भेजी, और तस्वीर भी इतनी नेकेड और इतनी गंदी। क्या इससे हालात बदल जाएंगे? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से इनकलाब रखा था? और क्या इससे आप उन हुक्मरानों से कोई खैर की उम्मीद रखेंगे? और ऐसे हुक्मरान जब आपको कोई अच्छा भी हुक्म देंगे तो क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? इतना मिजाज गिर गया आज हमारी कौम का, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम इतने थर्ड क्लास किस्म के जोक करते हैं, और हैरत की बात है बच्चे भी इन चीज़ों का शेयर करते हैं फेसबुक पे और इस तरह की इधर उधर की चीज़ों पे। फेसबुक पे बच्चों को भी मैंने देखा है कि इस तरह की चीज़ें करते हुए। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। अल्लाह ताला के इस फैसले को, अब हम सियासत पे बात तो नहीं करने आए ना, लेकिन यहाँ लिख लीजिए कि दुश्मन सॉरी हुक्मरान जब बुरे होते हैं ना तो अल्लाह ताला कहते हैं फी जालिकुम बला उम्मिर रब्बिकुम असे। इस जुमले को हाईलाइट करें, और मुझे याद है अच्छी तरह जब हमने इस आयत की तफसीर की थी तो इस पॉइंट पे मैंने काफी हाईलाइट किया था कि बजाहर तो फिरौन बच्चों को मरवा रहा था ना, मुसलमानों के खिलाफ था और उनकी हुक्म उनकी नस्लें तोड़ रहा था, लेकिन अल्लाह कहते हैं असल में ये मेरी तरफ से आजमाइश थी। तो हुक्मरानों के जरिए से जो काम उसको टिकट दिया, मिसाल दे रही हूँ आपको, एक कोई ओवर स्पीडिंग करता है या सीट बेल्ट नहीं बांधता, कभी आपने ये सुना कि उसकी गाड़ी को रोका गया और जो भी कानून बनाने वाला था, यानी जो भी कांग्रेस का या कोई जिनको आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने ये पास किया उनमें से कोई एक आया और उसने आके उस गाड़ी वाले को टिकट दिया या जुर्माना दिया? कौन देता है? पुलिसमैन देता है ना, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कांस्टेबल वो देता है। जिस तरह किसी मुल्क के कवानीन को तोड़ने पर उस मुल्क का बादशाह, वजीर, सदर या जो भी कोई बड़ा होता है, वो नहीं आके हमें टिकट देता, सजा देता, बल्कि उसकी तरफ से अपॉइंटेड कोई शख्स देता है। इसी तरह से याद रखिए, अल्लाह ताला की तरफ से जब आजमाइश आती है तो वो किसी इंसान के रूप में आती है। पिछले दौर के लोगों को देखिए, अगर वो हिटलर था, में अल्लाह का फैसला था। करने की क्या जरूरत है ऐसे हालात में? ये दो चार बातें भी कर लें साथ ही। सबसे पहले अपना मुहासबा, फिर उस मुहासबे के नतीजे में अगर गुनाहों की एक लंबी लिस्ट दिखती है तो तौबा, तौबा के बाद इसलाह, फिर अगली बात सलात में क्या करने की जरूरत होती है कि हम चेक करें अपनी जात से शुरू होता है। मैं सारी दुनिया के अंदर एनजीओज बनाकर और कमेटियां बनाकर इस्लाह की बातें कर दूंगी ना, और अगर मेरे अपने घर का माहौल अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों का नहीं है तो मेरी वो बातों से फायदा नहीं होगा। फिर एक शऊर बेदार किया जा सकता है, जैसे आज इस मौजू पे बात हो रही है, आप इस बात को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये भी एक आज के दौर में बेहतर है। बस अगर आज इस पूरे लेक्चर को सारे को नहीं भी तो सिर्फ इतने से क्लिप को आप छोटी सी ऑडियो में या वीडियो में ढालकर इसको फेसबुक पे आम कर दें, ऐसे मैसेज कैसे हालात में मैं क्या करना है ताकि दूसरों को भी शऊर मिले। और अगली बात ये है, यानी ये आज आप अपने दिल से नियत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, कोई इस मौजू पे आपको तस्वीर भेजे, कोई मैसेज भेजे, उस मैसेज का सिर्फ एक ही नसीब है, डिलीट इट, डोंट पास दीज टाइप्स ऑफ दी मैसेजेस। यकीन करें, मुझे बहुत पहले, अब बहुत से पहले से मुराद लग रहा है, 2-2.5 साल। ही हो गए होंगे किसी ईमेल, मुझे बिल्कुल ऊपर टॉपिक इतना ज्यादा अनक्लियर था कि मुझे नहीं समझ आया कि ये आज के हालात की कोई बात है, मुझे लगा कोई आर्टिकल है या कुछ है। बिलीव मी, 2-2.5 साल हो गए, लेकिन आज भी मेरी आंखों के सामने जब वो तस्वीरें आती है ना, तो मेरा दिल कट जाता है। इतनी गंदी तस्वीरें, बिकिनीज पहनी हुई बीचिस पे, और इस तरह के ड्रेसअप, यंग लड़के लड़कियां, और तस्वीरें थी पूरी ईमेल में, और हर एक के नीचे लिखा था, ये हमारे गवर्नर का बच्चा, ये हमारे फलां लाहौर के वालों का, ये उनके। यकीन करे, मैं सोच में पड़ गई। मैं उन दिनों में, मेरा ख्याल है ये नॉर्वे में थी, शायद नॉर्वे थी, मेरे जैसा बंदा जिसका कोई इतना ज्यादा रुझान भी नहीं है इन चीजों पे, वो वहां बैठ के सिर्फ इन तस्वीरों की वजह से क्या कुछ जान गया। वो सच था झूठ था उसको तो पीछे कर दे, और अगर उस ईमेल को पहले दिन डिलीट कर दिया जाता, जिसने मुझे की, उसने तो नहीं वो ईमेल बनाई ना, उसको भी तो कई हजारों तरफ से आई होगी ना। तो मैंने सोचा कि इन्होंने इस तस्वीर को आगे करके क्या खैर की है। अब ये बिलफर्ज मुझे मिली जिसका काम थोड़ा बहुत पढ़ने पढ़ाने का, हो सकता है उससे मेरे दिल में कोई दर्द पैदा हुआ, मैंने कोई अच्छे लफ्ज बोल दिए लोगों को कि ये ना करें। आम तौर पे लोग ऐसी चीजों को पढ़ते या देखते क्या करते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड कर देते, बेसोचे बेसमझे। तो ऐसी चीजों को खत्म करें, तौबा करें, दुआ करें, फिर अगला काम कि अल्लाह हमारे अमाल की सजा हमें दुनिया में ना दे, हमें रुसवा ना कर। और उसके बाद फिर बाशऊर लोग आगे आए, ये फिर आगे बड़े लोगों के काम है, जो मैं और आप तो फिलहाल नहीं कर रहे, लेकिन आप जहां तक सियासत में आपका ताल्लुक है, कानून तक, जिस तक आप मैसेज दे सकें, फिर वहां खैर की बात पहुंचाए। किसी जगह आप दर्स रखवा सकते हैं, सीडी पहुंचा सकते हैं। मुझे याद है कि हम सिंगापुर में थे, तो वहां एक सिस्टर के थ्रू वहां के जो एम्बेसिडर थे उनके घर में हमारा दर्स अरेंज हुआ। हम नहीं जा सकते थे वहां में, वो कहाँ जानते हैं, लेकिन चूंकि एक सिस्टर ने ये दावत सुनी हुई थी, उसने लेक्चर सुने, फिर उन्होंने कोशिश की, और विद इन 2-3 डेज उन्होंने इतने बड़े मजमे को, उनके बिल्कुल उसी पाकिस्तान की जो सिंगापुर एम्बेसी, उसके अंदर ये दर्स हुआ। तो मैंने सोचा कि ये खैर की बात थी ना, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां जाके भी बात करते हुए जरा कोई झिझक नहीं, कोई खौफ नहीं, क्योंकि बात वही है जो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे पेश कर दें तो उसमें कोई झोल नहीं है, क्योंकि ना इसमें किसी के खिलाफ कोई बात है और ना इस्लाम ऐसा है कि ये कुछ लोगों को तो सुनाओ कुछ को नहीं। तो बहरहाल इस पे जिम्मेदारी का एहसास रखें, अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें, कभी देखिए आपके बच्चों का अखलाक बिगड़ जाएगा इससे, कभी लोगों ने ऐसी बातें हुक्मरानों की आम नहीं की थी। फिर उसके बाद ये एक आजमाइश की किस्म हमने समझ ली, थोड़ा सा इसका हक तो नहीं अदा हुआ, लेकिन आगे चलते हैं। दूसरा वो काम कुरान पाक का जिसमें इस बारे में है, वो सूरत बकरा की आयत नंबर 124 है, वइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों से आजमाया, तो फातम महुन्ना, फिर उसने इन बातों को पूरा किया, यानी अल्लाह तला की तरफ से डाले गए जो इम्तिहानात थे उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास हुए। तो अल्लाह तला ने क्या कहा, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैं तुझे दुनिया का इमाम बना दूंगा, यानी तुझे वर्ल्ड लीडर बना रहा हूँ। काला, अच्छा, क्या मेरे वमिन जुर्रियती, मेरे बच्चे भी ऐसे ही होंगे, यानी क्या मेरे बच्चों से भी यही वादा है अल्लाह तला आपका, क्या आप इनको पूरी दुनिया का कंट्रोल दे देंगे। तो कहा नहीं, काला ला यनालु अहदे जालिमीन, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचता। अब इधर आजमाइश की थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्में हैं, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आजमाइशें एक रंग में नहीं आती। तो आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी किससे छुपी हुई है। बस मैं तो अपनी एक स्टूडेंट का बड़ा प्यारा कमेंट जो अभी चंद दिन पहले ही आया था, सूरत नहल की आयत में जब हमने हजरत इब्राहिम का जिक्र पढ़ा, तो उसके बाद उनकी एक शेयरिंग आई थी जिसका खुलासा क्या था कि जब उनका बेटा पैदा हुआ तो उनके ससुर की बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे का नाम इब्राहिम ये रखें, लेकिन कहती कि चूंकि मैं उस वक्त कुरान से नहीं जुड़ी हुई थी तो मुझे इब्राहिम नाम बड़ा आउटडेटेड लगा, पुराना नाम है, तो मैंने कुछ और कहा और फिर मेरी जिद पे वो हार गए, तो मैंने अपने बेटे का कोई और नाम रखा। अब माशाल्लाह वो कुरान कोर्स की स्टूडेंट है, तो अब कहती हैं कोई पारा ऐसा नहीं दिखता जिसमें हजरत इब्राहिम का जिक्र ना है, और जब हजरत इब्राहिम का कोई किस्सा आता है तो मुझे उस वक्त अपने इस फैसले पे मलाल होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर किस्म की आजमाइश में डाला था, बचपन में ऐसा माहौल कि जिसको इंसान पसंद ना करे। आप ये कह लीजिए उर्क नाम का एक शहर था, जैसी है जैसे यानी हब ऑफ दी सिविलाइजेशन कहते थे उस दौर में उर शहर को। सिंपल सी मिसाल है कि आज के दौर में जिस तरह अमेरिका या यूरोप का लफ्ज लोगों के जहनों पे छाता है ना, हजरत इब्राहिम वहां पैदा किए गए थे और इनका ताल्लुक उस दौर के शाही खानदान से था। इनका बाप उस बादशाह का एक बहुत करीबी वजीर लगा लें, ये वजीर के बेटे थे आज की टर्म में, पता नहीं उस दौर में तो क्या कहते होंगे। इतना परवर्टेड माहौल, दौलत और पढ़े लिखे इतने वो लोग थे कि ये जो 60 का हिंसिन, 60 की जो घड़ी की जो बांट है ना, ये उस दौर में शुरू हुई। लिखना इस कौम ने शुरू किया। मैंने तफसीर में इसकी डिटेल, मुझे याद है कि सूरत अल अनाम की तफसीर में बताई थी कि वो कहाँ आए, कोई गांव के पड़े हुए पैदा हुए नहीं थे। आज अगर हम ये सोच लेते हैं ना कि हम लोग अगर दुनिया के बहुत महजब मुल्कों में आ गए हैं, तो अब हमारा अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक ना भी हो तो खैर है, तो ये दुरुस्त नहीं। उस माहौल में इब्राहिम ने सबसे पहले इनकलाबी जुमले बोले, रेवोल्यूशन का आगाज किया। लोग वक्त के रिवाज थे और उस दौर का जो बादशाह था नमरूद, लोग उसको खुदा का अवतार कहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सब से ऊपर उठकर अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ताल्लुक जोड़ा, सूरज चांद सितारे को देख के बिल आखिर उनके रब को माना। इतनी छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे अभी माँ बाप से जिद्दें कर रहे होते हैं, इब्राहिम ने स्टैंड लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह पे। कौम के खिलाफ बात करने से पहले उनको पूरी तरह पैगाम दिया, फिर हिजरत की। इब्राहिम की तो पूरी जिंदगी आजमाइशों का शिकार है। देखिए बचपन में माँ बाप प्यारे होते हैं ना, तो माँ बाप को छोड़ना पड़ा, हिजरत करके बाप ने कहा मैं तेरी, यानी आप पढ़े इनकी मेरे लिए सूरह मरियम की आयत है अगर मैं भूल नहीं रही, इनके बाप ने इनको डांट दी थी, जिसको अपनी जुबान में हम कहें कि पीछे चले जाओ तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, पीछे होता तुम्हें पत्थर मरवाऊंगा, ये हालात है। बचपन में माँ बाप को छोड़ा, जो हम सबकी एक आजमाइश हो सकती है। हम में से कोई बिल्कुल ऐसे ही माहौल में पैदा हो हुआ और उसके इर्द गिर्द हर तरफ बेदीनी का दौर था, हम कहते हैं क्या करें जो बड़े कर रहे हैं हमें भी यही करना है, नहीं, ये भी एक आजमाइश होती है। आपने अपने माहौल को खुद चेंज करना है। आज भी हो सकता है कि आप में से कोई जवान होने के बावजूद सोच रहा हो कि मेरे तो खानदान में कोई कुरान नहीं पढ़ता, मेरे खानदान में तो कोई जाप नहीं करता, मेरा खानदान देसंदर, तो इब्राहिम आपके मेरे लिए एक रोल मॉडल है। फिर इंसान थोड़ा सा जब जवान होता है तो फिर बीवी अच्छी लगती है, शादी होती है। हजरत इब्राहिम पर बीवी की तरफ से आजमाइश पड़ी। किसी सफर के दौरान बीबी सारा इनके साथ थी और बादशाह ने उनके ऊपर बुरी नजर रखी, और उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी की इज्जत बचाने के खातिर एक तौरिया किस्म का झूठ बोलना पड़ा और बीवी की जगह उनको अपनी दीनी बहन कह दिया। आजमाइश है। थोड़ा और आगे चले जाएं, जब बुढ़ापा शुरू होता है तो औलाद बड़ी प्यारी होती है। अल्लाह ने 70-80 साल की दुआओं के बाद जब बच्चा दिया इस्माइल नाम का, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो बच्चा उनके करीब जरा भागने दौड़ने की उम्र का पहुंचा, वो तो बाद है, अभी न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता बच्चा, जिसको अल्लाह ने समझे कि इब्राहिम की आंखों की ठंडक बनाना था, कहा कि इसको और इसकी माँ को छोड़ो, जाके तुम किसी ऐसी जगह में जहाँ तिनका भी नहीं टूटता। गैर अजीजर इनके लफ्ज हैं सूरत इब्राहिम में, खुद कहते हैं कि अल्लाह मैंने अपने बीवी बच्चे को तेरे कहने पर बंजर जगह पे छोड़ दिया। आज हमें जरा दीन के नाम पे एक बहुत ज्यादा माहौल अच्छे को छोड़ के जरा कम अच्छे माहौल में जाना पड़े, तो हम कहते हैं बड़ी कुर्बानी है, हाय हिजरत है। इब्राहिम तो वहां छोड़ आए थे जहां रात को जानवरों का भी डर था कि कोई शिकारी जानवर ना खा जाए, क्या ये आजमाइश नहीं है? तो इसमें से आजमाइश की क्या झलक दिख रही है, जहां आपको अपने दीन पे अमल करना मुश्किल लगे। हालांकि मेरा ईमान ये है हर एक का फर्क हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो फिरौन के दरबार से भी बच के आ जाएंगे और चुंगल से भी। और यूसुफ को तो मिस्र के माहौल ने कुछ, अगर माँ बाप अनअवेयर होते हैं तो बच्चे उनको मक्का में भी ले जाएंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे। एक आलमे दीन थे तो किसी माँ ने उनको पूछा, बहुत तड़प थी उनके दिल में अपने बच्चों के लिए, दिस एंड दैट, और कहने लगी कि वेस्टर्न माहौल छोड़ के जाऊं तो किधर जाऊं और क्या करूं और दिस एंड दैट। तो उनका माँ की तड़प थी बहुत सारी उस सवाल के जवाब में, तो उनका जवाब तो उन्होंने कहा, एक जुमले का जवाब था कि जो माँ इतनी ज्यादा केयरफुल है बच्चा कहीं भी जाए खराब नहीं होगा, आप इसकी अच्छी तरबियत करें और इसको जिस माहौल में है ये इसको वहां के लिए तैयार करें। तो अब इसमें एक छोटा सा मजू आ रहा है हम वेस्ट में रहने वालों का, जिनके बच्चे हैं खास तौर पे, कि क्या करें, किधर जाएं, कहाँ रहें, सऊदी अरब चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप हिजरत करके कहाँ जाएंगे? आप कहते हैं किसी इस्लामी मुल्क में, तो आपका दिल तो टूटेगा बात को सुनकर, लेकिन क्या आज के दौर में कोई एक भी फुल इस्लामी मुल्क है? और मैं ये ज्यादा से ज्यादा कह सकती हूँ कि आज जितने 100 कुछ मुल्क हमें दिखते हैं ना इस्लामिक, ये इस्लाम फ्रेंडली कंट्रीज तो हैं, कि वहाँ इस्लाम पे अमल करना डेफिनेटली ईजी है वेस्ट की निस्बत। वहाँ ये गज का टुकड़ा को इतना बड़ा हवा नहीं है, और आधे गज का निकाब लोगों को अपने सारे कल्चर के ऊपर चोट नहीं लगता, मानती हूँ मैं। लेकिन याद रखिए कि आज के दौर में भी अगर आप, इवन सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां किसी हद तक इस्लामिक लॉज नाफिज है, लेकिन अगर वहां भी जाके अगर आपने अपने बच्चे के अंदर ईमान और रूह और तकवा ना दिया, तो वो गवर्नमेंट के डर से तो कुछ कर सकते हैं लेकिन उसके अपने अंदर नहीं है। मैं इसको इस तरह से समझती हूँ, जो आप में से शायद किसी को फायदा दे, कि एक बच्चे उसको तैरना नहीं आता, अब आप उसको किसी छोटी सी नदी के पास छोड़ दें और वो उसमें गिरे, स्विमिंग पूल में थोड़ा से गोते खा जाए, या किसी समंदर में या दरिया में, उसका नसीब क्या है? डूब जाएगा। हाँ, मुश्किल ज्यादा किधर होगी, जितना बड़ा दरिया होगा। आज इस तौर को आप यूं समझिए कि वेस्ट को या वेस्टर्न कल्चर को आप समझिए कि समंदर है बुराई का, नजरें भी नहीं पाक और अकीदा भी नहीं पाक और पीयर प्रेशर इतना है। थोड़ा सा उससे ज्यादा अच्छा माहौल आप किसी बच्चे को ले दे देते हैं तो वो ऐसी है कि जैसे दरिया है बुराई का। चले आप अपने मुल्कों में ले जाते हैं, वहां दरिया भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, समंदर भी नहीं है, लेकिन छोटा सा एक स्विमिंग पूल है जो बुराई का है। आपका बच्चा अगर तैरना नहीं जानता तो वहां भी डूबेगा। करें क्या? अपने बच्चों को तैरना सिखा दें। कल का भी तो यही टॉपिक था ना, अपने बच्चों को पता चले तुम किन की नस्ल हो, उनको आप तैरना सिखाएं, उनको सहाबा की कहानियां सुनाएं, उनके अंदर वो ईमान और तकवा पैदा करें कि ऐसी आजमाइशों से बच जाए। फिर आप देखिए कि बीवी बच्चे को छोड़ने की आजमाइश हुई, चलो इसमें भी पूरे उतर गए। आप और मैं क्या इस पे आजमाइश पे तैयार होते? आप में से कोई सुना रहा था कल के कितने साल बाद अपने शौहर को मिले, क्यों मिले? कि वो बेचारे दुनियावी सर्वाइवल के लिए कहीं गए ना। जब एक बीवी आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में, आप मेरा ले जो गांव देहातों में जाएं, तो मेरा ले के 50% ऐसी औरतें हैं जिनके मर्द किसी के दुबई गए हुए हैं, 4 साल से नहीं आए, 5 से नहीं आए, होते हैं ना, कोई अमेरिका चला गया तो फिर तो छोड़ दें, ऐसा मर्द मेरे जहन में कि शायद जब गए तो उसके 12-15 साल तक आए ही नहीं, और पीछे माँ भी गई, बाप भी गया, सब फते, जब वापस आए कोई दुआएं देने वाला भी नहीं था, सर पे हाथ रखने वाला भी नहीं था। तो जब हम दुनियावी तौर पे इतनी हिजरतें कर लेते हैं तो फिर अल्लाह के दीन के लिए हम कैसे नहीं कर सकते, ये भी चीज समझ आती है। लेकिन अब उससे भी बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम पे पड़ी कि जब बच्चा जरा चलने की उम्र के हुआ, सूरह सवात की आयत है गालिबन, जो सवात है कि जब फलम्मा बलगा माओ साया, जिस उम्र में बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो उस उम्र में अल्लाह ने कहा जाओ इस बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दो। जरा आप और मैं इस आजमाइश को महसूस कर सकते हैं, हमें तो ना जो कोई हुक्म दे सकता है, और अगर कोई शैतान ख्वाब में दिखा भी दे ऐसी चीज तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि नबी का ख्वाब हुज्जत होता है। लेकिन आप अपने ऊपर लें, इब्राहिम को कहा कि इस बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दो, चला दी, चली नहीं वो और बात है, अल्लाह बचा लेता है। हम अपने बच्चे के कैरियर के बारे में कितने कॉन्शियस होते हैं? क्या हमें पता है कि अगर उनको दीन की तालीम ना दी तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम होंगे? इसके बावजूद आप देखिए किसी से कहें कि 1 साल सिर्फ अपनी बच्ची को कुरान सिखाने के लिए डिवोट कर दें, उसको एक दफा कुरान सिखा दें, अपने बच्चे को दीन सिखाइए ताकि वो कुछ सीखे, तो कितने लोग कहते हैं कि ये पीछे रह जाएंगे सिर्फ इस रोने पे कि हमारा बच्चा से 1 साल अपने दोस्तों से छोटा हो जाएगा, रह जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए बेहतरीन मदरसे या बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में नहीं भेजते, और दुनियावी तालीम के लिए 15-20-25 साल तक हम उनको आजमाते हैं। हम इब्राहिम जैसी इस आजमाइश पे कहाँ गए? हमें से कितनों के बच्चे हैं? देखिए मौजू कोई भी आप लाएंगे ना, आपको हमारी गुफ्तगू में एक दर जरूर दिखेगा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, क्योंकि घर वो जगह है जहां हमारा इस्लाम दिखता है। आपका इस्लाम मस्जिद में जाके नहीं दिखेगा, आपका घर, आपका इस्लाम मक्का में, मदीना में, हज और उमरे पे नहीं दिखेगा, वो तो हम पोस्ट दे रहे होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कहाँ लब्बैक है हम अल्लाह के लिए? हम तो हय्या अलस सलार, हय्या अलल फलाह की पुकार पे लब्बैक नहीं कहते, हम कहाँ नमाज पे कहेंगे और कहाँ जाके कहेंगे और जिंदगी में कहाँ कहते हैं लब्बैक? जब कोई हुक्म अल्लाह का आता है मेरे और मेरे बच्चों के बारे में, तो क्या मेरा जवाब लब्बैक होता है? इब्राहिम अलैहि सलाम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी, हम उनकी ख्वाहिशों पे भी छुरी चलाते हैं? हमें तो उनकी आंखों के आंसू इतने मोटे मोटे दुखी कर देते हैं कि हाय मेरा बच्चा एसिमिलेट करना है। यानी आज यहाँ का तो मुझे इतना नहीं अंदाजा, ज्यादा वक्त चूंकि अमेरिका में गुजरा है, तो वहां माओ का एक पैटी जुमला होता था कि अगर हमारी बच्ची स्कार्फ पहन के स्कूल जाएगी तो ये अपने बाकी स्कूल फेलो से आइसोलेटेड फील करेगी। तो बिकॉज वी वॉन्ट टू बी असिमिलेट विद देम, तो हम अपनी बच्ची को इस कॉम्प्लेक्स में नहीं डालते। हम तो इतना सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो टांगे नंगी करके जाएं, कोई हर्ज नहीं। हमारी बच्ची सर पे कपड़े और स्काफ और अबाया पहन के जाए, हम कहते हैं ये बहुत आइसोलेटेड हो जाएंगे। हमारा ईमान आजमाइश का किस काबिल है? तो हम सवाल करें खुद से, क्या बच्चों की आजमाइश पे हम कामयाब हैं? अल्लाह सुब्हान तआला जब भी कोई नेमत देता है ना, तो उसमें आजमाइश होती है। फिर इसी तरह आप देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी और वो उस पर कामयाब रहे। हम सब भी इन चीजों पर खुद को पूछें, अल्लाह ताला जब कोई नेमत देता है तो भी आजमाइश होती है, दूसरी तरफ भी है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अहकामात माने, इनके ऊपर इस वक्त ज्यादा बात नहीं करूंगी, और क्योंकि हम कहेंगे वो तो अल्लाह के नबी थे। लेकिन ये तो आपने उनकी जिंदगी से समझ लिया है ना कि वक्त के मुताबिक माँ बाप के आगे भी खड़े हो गए अल्लाह की बात को सच का, बीवी का मामला आया तो अल्लाह का हुक्म माना, बच्चों की खुशी ना खुशी का मामला आया तो अल्लाह को माना। क्या मैं इन तीन रिश्तों में कामयाब हूं? ये खुद से पूछिए। चूंकि हम औरतें हैं तो हम बीवी की जगह शौहर कर लेते हैं। जब मेरी शौहर की तरफ से कोई मुतालबा ऐसा आता है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और तरीकों से टकराता है, तो क्या मैं उस आजमाइश में कामयाब होती हूँ कि नहीं? उस वक्त हमें लगता है बस ये बात ना मानी ना तो मियाँ तो तलाक ही दे देंगे। मैं सोचती हूँ क्या इतनी सी बात पे शौहर आपको तलाक दे देंगे कि आपने प्लगिंग क्यों छोड़ दी, या आपने गज का कपड़ा क्यों ले लिया, आप अब मेरे दोस्तों से शेक हैंड क्यों नहीं करती, आप मिक्स गैदरिंग में नहीं बैठती? आप खुद माशाल्लाह सिस्टर्स हैं, मैं भी शादीशुदा हूं, और आप भी, और अल्लाह ताला हम सबके शोहरों को सलामत रखे और उनको दीन और ईमान में हमारे साथी बनाए। मुझे बता सकते हैं आपके पिछली 10 15 20 साल शादीशुदा जिंदगी में आप अपने शोहर के सामने एक अच्छी बीवी बन चुकी हैं? उनको पता है कि आपका ये घर आपके बगैर नहीं चलेगा, खाना ऐसा अच्छा कोई नहीं पकाएगा, सफाई ऐसी अच्छी कोई नहीं करेगा, इखलाक प्यार मोहब्बत ऐसा कोई नहीं देगा, और सिर्फ ये चार बाल इधर और इधर के मैं उतारने शुरू करूं तो कहते चली जाओ तुम्हें तलाक दे दूंगा। कैन यू बिलीव? क्या ये जोक नहीं लगता? ये हमारा अपना अंदर का गुमान होता है। हम तो इन छोटी छोटी बातों पे, और यकीन करें कुछ बहनों का तो पक्का इरादा है अपने शौहरों को सामने करके जहन्नुम में जाना है। उनके नाम पे कहते हैं हम इफ्सानी, कोई बात करें यानी बगैर सोचे समझे लोग नाम में कहेंगे क्या करूं मेरे मियाँ को नहीं पसंद, कुरान क्लासेस में जाना मियाँ को पसंद नहीं, मेरे मियाँ ये पसंद नहीं करते, मिक्स कर देंगे मेरे मियाँ फुला 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 मेरे मियाँ। तो अल्लाह ताला तो कहते हैं कि ला तातली मखलूक इन फी मासियत अल-खालिक, मखलूक की तो किसी जगह बात नहीं मान सकते जहां अल्लाह की नाफरमानी हो, क्योंकि इन्नमत तात फिल मारूफ, इतात यानी बात मानना दिल की खुशी के साथ। ये तो इस बच्चे को उधर ले जाओ, ये आपका बच्चा है, कोई बात नहीं, उसको पता नहीं, आप ये छोटी सीट आगे कर दें, खोल ही ना सके, ये सीट आगे कर देंगे ना तो फिर आएगा उसे। तो गोया के फिर आजमाइश की एक किस्म हम पर हमारे बच्चों और हमारे शोहरों की तरफ से और शोहरों पे बीवियों की तरफ से आती है। ये अपनी जगह एक पूरा मौजू है, अगर आप इसकी मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहें या इस पे इल्म लेना चाहें तो एक टॉपिक है मेरा घर मेरी जन्नत, वेबसाइट पे भी कुछ ना कुछ उसका बहुत मौजूद है, मुझे याद है कि कैसे अपने घरों को जन्नत बनाएं, बीवी बच्चों की कैसी बात करें। फिर इसी तरह पेरेंटिंग ए टू जी, एक सेमिनार हुआ था हमारा नॉर्वे में 2 साल पहले, तो उसमें बच्चों की तरबियत और हर एंगल से बात हुई थी, छोटे बच्चे बड़े बच्चे गुस्से वाले बच्चे ग्रोइंग बच्चे टीनेजर, सेक्सुअल एजुकेशन किस हद तक बच्चों को दी जाए, उसकी ऑडियोज अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट पे मौजूद है, कभी चलते फिरते घर में काम करते हुए उसको सुनना शुरू कर दें तो आपको इस मौजू पे समझ आएगा। बाकी आपका मौजू के शोहर से कैसे ट्रीट करें, बहुत सारे चेहरे तफक्कुरात में पड़ गए इस मौजू को सुनते ही। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह निकाह ए टू जी के नाम पे एक सेमिनार है जिसके दो हिस्से हैं, मैरिड लाइफ ए टू जी और निकाह यानी शादी से पहले के सारे मरासिम और शादीशुदा जिंदगी के तकाजे। तो उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बात हुई है, तो उम्मीद है कि सुन सकते हैं। और बहुत कुछ है इंग्लिश में, नेट पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो आप जहां से भी फायदा उठाएं। लेकिन याद रखिए कि ये आजमाइश के बीवी बच्चों की खुशी के लिए हम ऐसे काम करें ये दुरुस्त नहीं। एक आखिरी बात सुना के आगे चलती हूँ। खातिब नबी बलता एक बदरी साहबी थे, अल्लाह के नबी के प्यारे साथी थे, लेकिन सिर्फ एक मौके पे उन्होंने अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में, इस्लाम से नफरत नहीं है, इस्लाम पे पूरा यकीन है, लेकिन उन्होंने कुफारे मक्का को खत तक लिख के दे दिया कि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे हमला करने अगर आएंगे तो तुम मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना कहना, मैंने तुम्हें इत्तला दे दी है। इतनी आजमाइश है, अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश का, इसको फितना का, और फितना कहते ही उस चीज को है कि जिसका सही इस्तेमाल फायदा दे और गलत इस्तेमाल इंसान को नुकसान में डाल दे। चलिए ये भी एक आजमाइश का तरीका। हमने अभी तक कितनी चीजें ओवरऑल हमने देखी, पहली थी बुरे हुक्मरानों की आजमाइश, हजरत इब्राहिम की जिंदगी में हमने रिश्तों की आजमाइश देख ली, हालांकि इब्राहिम की जिंदगी में और भी बहुत है लेकिन वो अगली आयतों में कवर होगा। तीसरी आयत पे चलते हैं, सूरत बकरा की आयत नंबर 155 जो मैंने शुरू में पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अलबत्ता हम जरूर तुमको आजमाएंगे, किस किस से, खौफ से, भूख से, मालों की कमी, जानों का नुकसान और फलों की कमरी कमी। मसाइबे खमसा, पांच किस्म की मुसीबतों का इसमें जिक्र है। आइए हल्का हल्का इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है खौफ। खौफ की आजमाइश क्या होती है? कि आज के दौर में आपको आम तौर पे हर फर्द खौफजदा नहीं दिखता। खौफ किस चीज का है? फियर, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इकोनॉमी ना डूब जाए, जंग ना लग जाए, दुश्मन ना आ जाए, कभी चोरों का खौफ, कभी किसका खौफ, है कि नहीं? चले हम तो बड़े अच्छे मुल्कों में बैठे हुए ना कि यहाँ चोरियां नहीं होती, लेकिन क्या यहाँ भी आप पूरी तरह पुरअमन है कि यहाँ चोरी नहीं होगी? खौफ अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। कभी इंसान को इस बात का खौफ होता है कि मेरे बच्चे ना बिगड़ जाए, बाज दफा फिक्र होता है बच्चियों के रिश्ते अच्छे ना हो। खौफ के मुख्तलिफ एंगल है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। क्या? कि जब भी किसी चीज का कोई खौफ हो तो उस वक्त आप अल्लाह की तरफ रजू करते हैं कि नहीं? जितनी चीजों का मैंने तذکرہ किया, इन सब से बचने की पनाह की दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई हैं। तो लिहाजा जब भी कभी किसी चीज का खौफ हो, सबसे बड़ा खौफ हमें किसका होना चाहिए? दुश्मन का खौफ होता है ना, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है। तो शैतान से बचने की दुआएं पढ़ते हैं। देखिए जिसने खुद खड़े होकर चैलेंज किया है कि मैं तुमको आजमाऊंगा आगे से पीछे से दाएं से बाएं से, क्या हम उसके बचने के लिए सुबह शाम की दुआएं पढ़ते? शैतान से बचने की दुआएं पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें बच्चों को भी पढ़ाएं। अगर बुरे माहौल का फिक्र है कि हमारे बच्चों को खराब करेगा, तो आप देखें कि एक तो उनकी जहनी साजी है ना, उनकी करेक्टर बिल्डिंग है, लेकिन साथ साथ दुआओं से सहारा लें। चोरों का डर है तो आप आयतुल कुर्सी और इसी तरह से हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं। बुरे हुक्मरानों का डर है तो उसकी दुआएं मौजूद है, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई कि अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैया। छोटी सी दुआ है कि अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, ला उशरिक मैं नहीं शरीक करता बिही शैया उसके साथ किसी को। कहते हैं किसी जगह जाओ, आपको इंटरव्यू देना है, आपको किसी अदालत में जाना है, किसी आईडी इमिग्रेशन से गुजरना है, आप ये दुआ पढ़ें। फरमाया कि तुम्हें अल्लाह खौफ से अमन दे देगा। फिर दूसरी चीज देखिए, खौफ के बाद, क्योंकि अपने मुल्कों में होते तो शायद मेरा सारा दर्स इस पे हो जाता, आज वहां जो हर बंदा खौफजदा दिखता है आपको, कोई किडनैप ना कर दे, कोई माल ना ले ले, कोई कुछ ना ले, और जो वहां के अबतर हालात है वो हम सब जानते हैं, और वो हमारे ही अमाल की सजा। एक आध दिन पहले किसी सिस्टर के बारे में पता चला कि जब गई एयरपोर्ट पे तो पोर्टर को गलती उन्होंने ये कर दी कि जब उनको पैसे दिए तो वो उस जिस मुल्क से गई थी उसकी करेंसी में दे दिए, तो उनको पता चल गया ये बाहर से, और उनको पहले ही पता होता है फ्लाइटें कहाँ से आई। कहती हैं पैसे देने की देर थी, यूं झपट के पर्स खींचा लेके भागा। आप भी सोचते हैं जब हम पाकिस्तान जानते हैं तो मैक्सिमम कीमती चीजें डॉक्यूमेंट्स हाथ में रखते हैं, कि इवन उनके बच्चों की जो आईडी थी पाकिस्तान की, पूरा पर्स वो लेके भाग गया भरे बाजार में। कैन यू बिलीव कि वापसी पर उनके बच्चे नहीं आ सके उनके साथ, क्योंकि उनके INS कार्ड, उसमें वो जो है नॉप कार्ड होता है, उसमें नाइक कार्ड NIC होता है ना, नाइकॉट, वो नहीं आ सके, सारे पैसे गए। कितनी मेहनत में गए होंगे, क्या 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 अरमान लेके गए होंगे, तो क्या आप ऐसी जगह पे कोई अपने आप को सिक्योर फील करते? तो लिहाजा इन सारी चीजों को अपने सामने रखना है। दूसरी चीज आप देखिए, जू भूख। अब भूख और नक्श मिनल अमवाल और फलों को इकट्ठा ले लेते हैं, गुर्बत जिसको कहते हैं। आज के दौर में इसका अपडेटेड लफ्ज मेरी नजर में जो है ना, वो क्या है कि इकोनॉमी डूब गई, करेंसी का रेट कम हो गया। सुनते रहते हैं ना ये बातें, मुझे आपके तो इधर के हालात इतने नहीं पता, लेकिन डॉलर के रेट में जो फ्लक्चुएशन हुई पूरी दुनिया में, उससे क्या हालात हुए कि लोगों ने, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई थी, वो कहते हैं कि कीमतें इतनी बढ़ गई कि डॉलर इतना ऊपर चला गया, हमारी कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, सोने का रेट ऊपर नीचे होता है। तो ये सब कुछ नक्सम, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। मैन मेड जो लॉज होते हैं ना, वो हमेशा एरर में जाएंगे। फ्लक्चुएशन इतनी, आज भी गोल्ड कॉइन्स पे, सिल्वर कॉइन्स पे आप दुनिया को ले, पूरी दुनिया में एक ही माल है। अमेरिका से आप एक गोल्ड कॉइन लेके निकलते हैं चाइना तक, उस सिक्के की एक ही कीमत है। फर्क सिर्फ होता था पहले दौर में, इस पे बात हुई हुई है क्लासेस में बहुत सारी, कि पहले दौर में गोल्ड के सिक्के होते थे, अमेरिका में जाते थे तो अमेरिकन स्टैंप होती थी, चाइना में पाकिस्तान में जाएंगे तो उसी के ऊपर चाइना पाकिस्तान की होगी, पता चलता था ये पाकिस्तानी सिक्का ये उनका सिक्का है, और जहां जाके बेचेंगे उसका एक ही रेट था, क्योंकि गोल्ड की अपनी कीमत है। जब से ये करेंसी नोट आए, ये इकोनॉमिकल टेररिज्म का आगाज है। इस वक्त पूरी पूरी कौमें किडनैप्ड है, हमारे कागज पे जो स्टैंप, शादी पे 125 रुपए तोला सोना था, वहीं लेके रख लिया था। सुनते हैं ना, मुझे एक दफा किसी चीज की रिसर्च कर रही थी तो उसके दौरान मुझे एक पेपर दिखा, 1800 यानी आज 2000 है ना, 1800 से लेके अब तक ईयरली गोल्ड रेट्स की, उसमें रेट बताए हुए थे। हैरत की हद तक देखें कि 1800 तकरीबन 200 साल तक गोल्ड के रेट में एक ही थे, 1920 का भी नहीं फर्क दिखा मुझे। उसके बाद जब 19 सेंचुरी से लेके अब ये जो 2000 हमारा चल रहा है ना, सारे फ्लक्चुएशन व्यू है। और आपको पता कि ये कौन सा दौर था जब करेंसी नोट इश्यू हुए? आज आप देख लीजिए, आपको पता ही नहीं गोल्ड आपने लिया है उसका क्या बनेगा, नुकसान है कि फायदा है, ये सब कुछ माली नुकसान आता है। इसके ऊपर मैं और आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जब हमें माली नुकसान हो तो हम क्या करें? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अख्लफली खैरा मिन्हा। माल की कमी से उतना नुकसान नहीं होता जितना ईमान की कमी से नुकसान होता है। इसको छोटे लेवल पे ही अगर समझ लें कि जब आपके शौहर की जॉब चली जाए, जब आपके शौहर को कारोबार में कोई नुकसान हो, जब आपके बच्चे का कोई नुकसान हो जाए, उस वक्त अल्लाह ताला आजमाइश क्या कर रहा होता है कि तुम इन हालात में कैसे समझते हो। बल्कि ये वो आयत है जिस पे अगर हम मैक्सिमम बात इसको, इस आजमाइशों के नजरिए को समझ लें तो मुझे यकीन है कि फायदा मंद होगा। हम कहते हैं कि हम पे आजमाइशें आती हैं, सवाल यह है कि पहली बात है कि क्यों आती है, पहला क्वेश्चन। मैं आपको इसके एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए कि एक शख्स है जिसको आप कई साल से जानते हैं, आप अपने खानदान के किसी भी दोस्त को समझ लें, यानी जिन जो आपके अब्बू के दोस्त हैं आपके पास आते हैं, और वो आपको कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। क्या काम है? वो अपना बैग खोलते हैं, उसके अंदर एक गोल्ड का बिस्किट है या कुछ गोल्ड के सिक्के हैं या व्हाटएवर। कहते हैं देखो ये मेरे पास सोना रखा हुआ था, मुझे एक मुश्किल पड़ गई है, तो मैं बाहर दूंगा तो वापस नहीं मिलेगा कुछ भी, तुम ये सोना मुझसे खरीद लो, मुझे इसकी जगह पैसे दे तो मैं पैसे इस्तेमाल करूं। अच्छा अब आप देखिए कि ये बात सुनकर एक सूरत क्या है कि आप कहते हैं कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या व्हाटएवर, लेकिन आपको लगता है कि अपना ही फायदा है, कुछ नहीं है सोना लेके, चलो पैसों की जगह रख लूंगी तो फायदा होगा। अब आप क्या करेंगे कि ठीक है ये तो है, लेकिन अंकल जी जो भी है मुझे इसको पहले सुनार से दिखाना पड़ेगा कि क्या ये सही सोना है भी कि नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं है। और अगर ऐसी तरह से कोई सोना किसी से लेने लग जाए तो आप देख लीजिए कि सारे लोग ही कंगले हो जाएं। कोई भी उस पर पानी चढ़ा के ले आए। अब आप क्या करते हैं कि उस सोने को उठाते हैं और सुनार के पास लेके जाते हैं कि भाई देखो, ये पहली बात है, ये गोल्ड है भी कि नहीं, दूसरी बात है ये किस कैरेट का गोल्ड है, 24 है, 22 है, ये 21 है, ये 18 कैरेट है, या कुछ भी नहीं है। यही होता है ना, जब आपको कोई आता है आपका प्यारा और वो कहता है कि ये सोना है इसको ले लो, तो आप उस सोने को परखने के कई मुख्तलिफ एंगल रखते हैं। अब आ जाइए उसको अपने ऊपर। हम दिन रात अल्लाह ताला से कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह तेरे रसूल हैं। अब जब हम ये कहते हैं ऐसे जैसे हम गोल्ड हैं, तो अल्लाह ताला क्या हमें परखेगा नहीं? हम इस दावे में कितने सच्चे हैं। और सच्ची बात है, ये तो अलग बात है हम अरबी में पढ़ते हैं, अगर हम उर्दू में कलमा पढ़ रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह जो तू कहेगा मैं वही करूंगी, जो तेरे नबी का तरीका था वही मेरा तरीका, जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद, जो तुझे नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद, जो तू नहीं करेगा वो नहीं करेगा। ये इकरार जब आप दिन रात अल्लाह के सामने करते हैं तो क्या अल्लाह आपको आजमाएगा नहीं? ये आजमाइश होती है, पता चल जाए कि कौन किस दर्जे का खरा है, कौन 24 कैरेट का गोल्ड है, कौन सा 22 का, और कौन सा सिर्फ गोल्ड प्लेटेड है, अंदर तो पता नहीं चांदी भी ना हो। हमारे ईमान की असल पहचानने के लिए हम पे आजमाइशें आती हैं। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि एक बंदा जो दावे करता है इतने बड़े बड़े, वो दावों में सच्चा कितना है, फिर बिहेव कैसे करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत बात है कि आपने, बल्कि वो बात जब आप बयान कर रहे थे तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और आपको पता है कि अल्लाह के नबी बहुत खिलखिला के नहीं हंसते थे, इतना स्माइल देते थे ज्यादा से ज्यादा कि ये थोड़े से दांत दिखते थे। तो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक बात बयान की और आप इतना मुस्कुराए कि आपको देखकर हमें हैरत हुई कि आप बहुत कम इस तरह से खुल के हंसते हैं। तो हमने पूछा अल्लाह के नबी आप क्या क्यों मुस्कुराए, तो फरमाया जो बात मुझे मेरे रब ने बताई वो अगर मैं तुम्हें भी बता दूं तो तुम भी इससे खुश होगे। और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बताया कि आजबुल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला भी अजीब है। कैसे अजीब है? कि जब उसको खुशी मिलती है तो वो उसमें शुक्र करता है और उसको जन्नत मिल जाती है, और अगर वो सब तकलीफ पड़ती है उस पर तकलीफ में सब्र करता है तो उसको जन्नत मिल जाती है। जन्नत में जाने के दो दरवाजे हैं, सिर्फ बात को समझाना चाहती हूँ। हम सब इस वक्त इस हॉल में बैठे हैं ना, एक ये दरवाजा है एक वो दरवाजा है, कोई इस दरवाजे से अंदर आए तो भी इसी रूम में आएगा, और अगर उधर से आए तो भी इधर ही आएगा ना। एक दुख का दरवाजा है, एक सुख का दरवाजा है। अल्लाह ताला कभी कभी हमें तकलीफों में डाल के आजमाते हैं, वो क्या देखते हैं कि कौन है जो इस तकलीफ पे खुश रहे। सबसे पहली बात है कि जब आपको मुझे कोई दुख पहुंचे तो खुश हो, अल्लाह की रजा पे राजी रहे। हदीस में आता है कि जब बंदा तकलीफ में अल्लाह से राजी होता है तो अल्लाह को हैरत होती है उस बंदे पे, फरिश्तों को अल्लाह ताला पूछता है कि सुनाओ तुम्हारे, मैंने अपने उस बंदे के फलां किसी प्यारे की जान ले ली, जब उसको इस बात की खबर मिली तो उसने क्या किया? तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा अजीब बंदा है, जब उसको ये इत्तला पहुंची कि तुम्हारे फलां प्यारे की जान चली गई, मौत चली गई, जैसे इसी आयत में अब आप देखिए ना कि अनफुस की भी बात है, प्यारे जान चली जाती है, हमारे अजीज वकारी फौत हो जाते हैं, हमारे बाप भाई बहन रिश्तेदार, शौहर के बीवी, बीवी का शौहर दुनिया से जाता है, तो उस वक्त क्या खबर होती है? तो कहा कि जब उनको उनकी मौत की खबर मिली तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का मैंने अपने बंदे को इतना बड़ा दुख दिया और उसने उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जी अल्लाह का गवाह रहना कि मैंने उसको जन्नत में एक महल दिया और उसका नाम बैतुल हम्द रख दिया। अल्लाह तो जाया नहीं फरमाते। असल बात यह कि रिएक्ट क्या करते हैं। खुशी और गम इम्तिहान के दो पर्चे हैं, दोनों के बदले में कुछ है। देखिए हमने जो आज का टॉपिक रखा कि जिंदगी एक इम्तिहान है, और शुरू में आपको जो तिलावत सुनाई गई वो सूरत सूरत मुल्क की इब्तदाई आयतें के, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या पता चला कि बरकत है वो जात जिसके हाथ में जमीन आसमान की बादशाही है, और उसने जिंदगी और मौत का सामान बनाया ताकि देखे कि तुम में से कौन अहसन अमल करता है। तो कमरा इम्तिहान है ना, और हम सब इस वक्त इम्तिहान की हालत में, बल्कि अगर इस आयत की पहली आयत की तफसीर आप सुने तो उसमें पूरी एक एग्जाम्पल से हमने इस पूरी जिंदगी को एक कमरा इम्तिहान से रिलेट किया हुआ है कि दुनिया में आने और कमरा इम्तिहान में क्या मुमासलत है। तो क्या पता चला, इम्तिहान आता है। अब मुझे ये बताइए कि इम्तिहान के बाद क्या निकलता है, रिजल्ट, जजा या सजा या पास या फेल। तो हर तकलीफ के बाद आपको जजा भी मिल सकती है और सजा भी मिल सकती है। फेल कब होंगे, जब उस तकलीफ पे हाल दो हाल अपने आप को मुश्किल में पड़ गए। जब लोग तकलीफ को बाय से जहमत समझते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। आप लोग जहमत लिखें और उसका ऊपर का एक नुक्ता हटा दें, आपने बाय से जहमत को बाय से रहमत बना लिया। रिजल्ट जरूर होगा। अल्लाह का वादा है कि हर गम के बाद बंदे को खुशी मिलती है। अगर आप कुरान पाक का जायजा लें तो आपको ये सिफत भी अल्लाह ताला की बहुत जगह दिखेगी कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत और युखरिजुल मय्यत मिनल हय, आती है आयत। और इसी तरह आप देखिए कि सूरत आले इमरान की वो खूबसूरत आयतें जो हम लोग बहुत शौक से भी पढ़ते हैं कि कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा वतनजुल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। उसकी अगली आयत क्या है, सूरत आले इमरान की आयत नंबर 27 है ये, कि जिसमें फरमाया कि तूलिजुल लैल फिन नहार वतूलिजुन नहार फिन लैल, तू रात को दिन से और दिन को रात से निकालता है। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय। तो ये कायनात हमें रोज दिखा रही है। दिन में दो बार ये सबक पढ़ाया जाता है कि रात दिन में और दिन रात में बदलता है। साल में चार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि बहार खिजा में, गर्मी सर्दी में, और सर्दी गर्मी और खिजा में बदलती है। तो जिंदगी में ये रहेगा, जिंदगी साइलेंट नहीं है, हम सब पे हालात पलटते रहेंगे। करना क्या, बशीर साबिरीन, खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। जब कोई तकलीफ पहुंचे तो पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर उसके बाद अल्लाह की रजा पे राजी रहें। दो नफिल पढ़ सके तो नफिल पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहें। इस बात का जवाब है कि कोई बात नहीं, हमने कौन सा इस दुनिया में बैठ रहना है, वो चले गए, हमने जाना है। एक दुआ हदीस में सिखाई गई जो उम्मे सलमा को उनके शोहर अबू सलमा ने अल्लाह के नबी से सीख के सिखाई थी, और वो क्या थी कि अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वख्लुफली खैर मिनहा, कि अल्लाह मुझे मेरी इस तकलीफ पे अजर दे और मुझे दुनिया में इसका इससे अच्छा बदला दे। उम्मे सलमा कहती है कि मेरे हस्बैंड ने जब ये दुआ सिखाई तो मैंने भी सीख ली। उस दौर के शोहर भी कितने प्यारे थे, जो सीख के आते थे वो सिखाते थे। चले आज मर्दों के सीखने का रिवाज कम है, लेकिन हम औरतें भी तो अच्छी अच्छी बातें मर्दों से शेयर कर सकती हैं ना। ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बातें ना किया करें कि जिसको सुन के वो गुस्से में आए, लेकिन अच्छी बातें तो सिखा सकते हैं ना। खैर, अल्लाह का हुक्म देखिए कि कुछ अरसे के बाद अबू सलमा का इंतकाल हो गया, और उम्मे सलमा कहती हैं कि मैं इद्दत के दौरान यही दुआ पढ़ रही हूँ जो शौहर ने सिखाई थी, और दिल में क्या सोचती हूँ। देखिए, उनका उनकी दुआएं सिर्फ लिप सर्विस नहीं थी, उनका ईमान भी था। कहती है कि मैंने ये सोचा कि क्या अबू सलमा से भी कोई अच्छा मर्द होगा जो मुझे अब इनके जवाब में मिलेगा। उस दौर में ये नहीं होता था कि शादी, कोई फौत हो गया तो अब शादी नहीं हो सकती दोबारा। आज तो जवानी में भी बेचारी बेवा हो जाती हैं तो दूसरी शादी लोगों के डर से कभी नहीं करती, कभी बच्चों की वजह से नहीं करती। इस्लाम का ये मिजाज नहीं था। फरमाया कि तीन चीजों में देर ना करो, जिसमें एक चीज ये थी कि वो औरत या मर्द जिसका साथी जुदा हो जाए उसके निकाह सानी में। वजह क्या है कि अल्लाह का हुक्म था, मान लिया, फिर गम में ही रहेंगे ना। हमारे यहाँ तो तसव्वुर नहीं, कोई करके तो देखे दूसरी शादी, जिंदा बंदे को दरगोर करने वाली कैफियत है। और हिंदुओं की तरह सती होना ही, औरतों को लगेगा कि मर्दों के साथ ही दुनिया से चले जाएं। हालांकि आप देखिए कि वक्त के साथ इंसान को साथी की जरूरत ज्यादा होती है। हम कहते हैं जवानी में तो शौहर की जरूरत होती है, नहीं, उस वक्त और भी इतने लटिक्के साथ होते हैं, आरज़ुएं, तमन्नाएं, बच्चे। जो बुढ़ापे के अंदर इंसान की होती है हालत, वो तो तन्हाई की है, बच्चे तो दिन ब दिन अपनी जिंदगी में जाएंगे। तो लिहाजा हजरत उम्मे सलमा इसी उम्मीद के साथ ये दुआ पढ़ती रही, और आपको कहता है कि जो ही इद्दत गुजरी अल्लाह का नबी उनके दरवाजे पे खड़ा और निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी, मैं कैसे कर सकती हूँ आपसे निकाह, मैं तो बड़ी उम्र की औरत हूँ। तो कहा कि मेरी भी उम्र कम नहीं है, कहा कि मेरे मिजाज में गुस्सा है, कि ऐसा ना हो कि शौहर होने के नाते मैं कुछ ऐसी आपसे बेतकल्फी में कह दूं जिससे नबूवत के मुकाम पे चोट पड़े और मेरा ईमान जाए। कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारा गुस्सा कम कर दे। कहा मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों को मैं अपने बच्चे बनाऊंगा। और इस दुआ के पढ़ने से उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन में बदल गई। तो क्या पता चला कि अल्लाह की जात बंदे को तकलीफों में डालकर उसके बेहतर बदले देती है। और ये ईमान होना चाहिए किसी रिश्ते में। अब जरूरी नहीं कि बीवी है तो उसको शौहर ही नया मिल जाए, आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा बच्चों में रिश्तेदारों में जो शौहर से ज्यादा आपका ख्याल करेगा। तो दुआएं मांगने की जरूरत होती है, फिर ऐसे वक्त में अल्लाह की रजा पे राजी रहे। मेरा रब कभी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकता। कभी आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ ने बचपन में जो मामला आपके साथ किया उसमें कोई आपके लिए उनकी तरफ से सजा थी? जब आपकी माँ नहीं, बच्चे को एक थप्पड़ भी माँ मारती है तो क्यों मारती है? कि वो ठीक हो जाए, उसकी इस्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला थप्पड़ जैसी तकलीफ अगर दुनिया में जिंदगी में डाले तो क्या उसमें शर होगा? ये अल्लाह की रहमत पे ईमान का तकाजा है कि बंदा ये सोचे कि मेरा रब मुझे कभी भी बुरे हाल में नहीं छोड़ेगा। फिर उस तकलीफ का तस्करा ना करें, उसको छुपाने की कोशिश करें। लोगों के अंदर जब बैठे तो अपने आप को बहुत मुतमईन और खुश देखें। और क्या फिर नोहा कानी खानी और रोना धोना और हर वक्त दुख? अल्लाह को अपना दुख बताएं, इन्ना मशकू बसी व हुस्नी इलाल्लाह। हजरत याकूब पे बेटे की चोट पड़ी और कहा मेरा गम शिकवा अल्लाह के साथ है। हजरत आयशा की इस्मत पे यानी उनकी पाक दामनी पे तोहमत लगी, उन्होंने भी अल्फाज बोले। फिर इसी तरह ये कि उसके अंदर से अपनी इसलाह करें। हम आज गुनाहगार लोग हैं ना, हम पे जब कोई इस किस्म की तकलीफ आए तो अपना मुहासबा करें कि मेरे ऊपर ये कुछ हुआ। लेकिन जो नहीं करना वो शिकवा नहीं करना, बयान नहीं करना, तकलीफ में नहीं आना, और बल्कि उसकी खैर ढूंढे। देखिए मिसाल देती हूँ ना, कि जैसे एक औरत है उसका बच्चा था, अब वो बच्चे के साथ हर वक्त बिजी रहती थी। अल्लाह का हुक्म हो गया, बच्चा चला गया, अल्लाह ले गया, क्या रोती रहे? नहीं, सोचे बच्चे की वजह से दीन नहीं सीख सकती थी, बच्चे की वजह से नमाज में खुशू नहीं था, बच्चे की वजह से अल्लाह से कुर्ब कम था, तो आप वो काम करना शुरू कर दें। एक और औरत उम्मे सुलैम उनका नाम था, तो उनका बेटा बीमार था, शौहर भी घर में किसान थे बेचारे, काम करते थे, देखा बेटा बीमार है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि वो काम पे चले गए, पीछे से बच्चे का इंतकाल हुआ। जरा सोचिए वो कैसी पहाड़ सिफत माए होती थी, बच्चे को धुलाया नहलाया धुलाया, उसको कफनाया और अलग कमरे में उनको लिटा दिया। शाम को शौहर घर आए तो कहा सुनाओ बेटे का क्या हाल है? इस सोच से कि शौहर चूंके थकवान था कि जो ईमान की हालत में मर गया और बेगुनाह बच्चा तो तकलीफ से चला गया, तो अच्छा कहा अच्छा ठीक है। शौहर को खाना दिया, खाया, कहा शौहर थोड़ा आराम कर लें फिर बताती हूँ। शौहर की ख्वाहिश पूरी की, सुबह के करीब कहने लगी कि ये बताइए कि अगर आपके पास किसी ने अपनी अमानत रखी हो तो जब वो अमानत वापस लेने आए तो आप क्या सोचेंगे? कहा शुक्र करूंगा, जिम्मेदारी का बोझ कम हो रहा। तो कहा जो अल्लाह ने आपके पास अमानत रखी थी वो वापस ले ली, आपके बच्चे का इंतकाल हो गया। अब ये सटपटाए कि ये क्या हुआ, बच्चे की मौत हो गई और आपने मुझे बताया नहीं? अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह ताला के नबी को वही के जरिए से पहले ही इस औरत की इस बात की खबर हो गई थी। आपने फरमाया तुम्हें मुबारक हो, आज की रात अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक और बच्चे की उम्मीद रख दी और उसी का बेहतर बदला एक और बच्चा उनको कुछ महीने में फिर मिल गया। बशीर साबरी। फिर एक और काम करें, जब तकलीफ आए, छोटी भी आ सकती है बड़ी भी, अपनी औकात पहचाने। मैं हूं क्या, मेरे ऊपर तो इससे ज्यादा आनी चाहिए। देखिए हम तभी नहीं बोझ उठाते जब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। तकब्बुर होता है और किब्र होता है ना, और अपने आप को बहुत बड़ा समझे हुए तो हम कहते हैं मुझ पे आई क्यों, मेरे पे क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, जब ये जुमले बोलते हैं ना तो फरिश्तों को घिन आती होगी हमारी इन बातों से। और जब आप सोचें कि मुझ गुनाहगार पर तो इससे ज्यादा आनी चाहिए थी, तो फिर आप सोचेंगे क्या कि ये कम आई है। सोचें कि मैं जो गुनाह करती हूँ वो तो इससे बहुत ज्यादा करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे ऊपर ये तकलीफ डाल के मुझे पाक करता है। अब सवाल ये कि आती क्यों है, जो बता दिया आपको कि हमारे ईमान का इम्तिहान है। फिर एक और चीज होती है और वो क्या कि अल्लाह ताला हमें दर्जे बुलंद देना चाहता है। कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनको हम अपने अमाल के साथ, कुछ दर्जे ऐसे होते हैं अपने अमाल के साथ हम उनको पा लेते हैं। रिवायत सुना देती हूँ तो इंशाल्लाह उससे बात ज्यादा समझ आ जाएगी, और अपने लफ्जों में सुनाऊंगी चूंकि जनरल दर्स है। और वो कहे कि एक शख्स है, उसको अल्लाह ताला को उस बंदे से प्यार हो जाता है, अल्लाह को सबसे प्यार है लेकिन जिससे ज्यादा होने लगे आ जाता है। अल्लाह ताला उस मोहब्बत की बुनियाद पे फरिश्तों को कहते हैं कि जाओ इसको जन्नत का फलां दर्जा लिख दे दो। बस इसको जन्नत ही कर दो, कर दिया। अल्लाह को कौन रोक सकता है, उससे कोई नहीं पूछ सकता, वो सबसे पूछ सकता है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला आदिल भी है, अलअदल और अल हकम भी है। जब उस बंदे की तरह रजू किया जाता है तो उसके अमल इस काबिल नहीं होते कि जन्नत का वो आला दर्जा मिले। ठीक है, नीचे का कोई मिल सकता तो ऊपर का नहीं मिलना, तो अब क्या करें। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं जाओ इसके ऊपर ये सदमा डालो, इसका गुलाम चला गया, इसकी बच्चा फौत हो गया, इसका ये, और इस तकलीफ पे मैं इसको सबर की तौफीक दूंगा और इस सबर के बदले में इसको वो जन्नत मिल जाएगी जो पहले ही दे दी है। यानी कुछ को तकलीफों में, कुछ को पहले से अमल करवा के जन्नत मिलती है और कुछ को पहले जन्नत दी जाती है फिर कहा जाता है कि आओ अब अमल करो। इसी को कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये अल्लाह के फैसले होते हैं। आप ये देखें कि अल्लाह ताला आपको उस तकलीफ के बाद क्या देता है। फिर एक और काम करें, जब आप पे मुसीबत आए तो क्या करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफों को सोच लें। आपके एक हदीस का खुलासा है कि जब तुम पे कोई तकलीफ आए तो मेरी तकलीफ को सोच लो, तुम्हें अपनी तकलीफ कम लगेगी। क्यों? ये भी अल्लाह की एक सुन्नत समझ लें कि तकलीफ बंदे के ईमान के हिसाब से आती है। जितना ज्यादा ईमान उतनी बड़ी तकलीफ, और जितनी बड़ी तकलीफ उतना बड़ा अजर। आप अपने नबी को तो देखिए, फी जमाना आप जो कह सकते हैं, तकलीफें किसी को आ सकती हैं, अकेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गई। किसी बच्चे के बारे में आपको इत्तला मिले कि बाप की वो पैदाइश, बाप की वफात से बाद बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का क्या मुकाम है? हमारे अपने खानदान में ऐसा हुआ था, शादी के शायद 2 ढाई साल बाद ही एक लड़का था, उसकी डेथ हो गई और उस वक्त उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। वो दिन मुझे याद है कि वो फौत, जब बीमारी हुई थी उसको, शायद कैंसर था और 2 1.5 साल कुछ इस तरह से बीमार रहा। बहरहाल उस दिन भी लोग दुखी थे, लेकिन जिस दिन उसके फौत होने के कुछ महीने के बाद उसके घर बच्ची पैदा हुई, उस दिन ज्यादा रो रहे थे क्या इस बच्ची का क्या होगा, हाय अल्लाह ने बच्ची ले ली, बाप के बगैर ये होगा और क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो बच्ची आज बहुत खुश है और अल्लाह ने उसको उसका बेहतर बदला दुनिया में भी दे दिया। बाप दुनिया में आपके आने से पहले वफात पा चुके हैं। हम कहते हैं ऐसे बच्चे तो कभी उठ ही नहीं सकते, उनको तो गम ही बड़े मिल गए। फिर आप देखिए कि 2 साल की उम्र में क्या हुआ, जी बताइए, माँ फौत हो गई। छोटी सी उम्र में, नहीं 6 साल की, 2 साल की उम्र में भी कुछ हुआ था, जहन में नहीं आ रहा। यानी अल्लाह के नबी की माँ का इंतकाल हो गया बचपन में, छोटा सा बच्चा, माँ चली गई। 8 साल की उम्र के हुए तो दादा चले गए, जिन्होंने माँ बाप के बाद बाप बन के पाला। चलिए ये तो जाती इम्तिहान थे, आगे चलिए अगर सारे जाती भी जमा कर लें, हम कहते हैं किसी के बेटे नहीं है, बेटे हुए फौत हो गए। अल्लाह के नबी के 3 बेटे आपकी जिंदगी में ही बचपन में ही पैदा होने के कुछ अरसे के बाद फौत हो गए। फलां की जी सिर्फ बेटियां, 4 बेटियां थी अल्लाह के नबी की, एक को छोड़ के फातिमा, 3 बेटियां अल्लाह के नबी की जिंदगी में फौत हो गई। अब ये सारे आपको इंसानी मामलात के गम बता रही हो ना, और किसी के लिए हमारी नजर में गम के कि हाय उसकी बेटी को तलाक हो गई। और उससे भी बड़ा गम ये होता है कि वो किसी दीन की वजह से हो जाए, नहीं हुई थी, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम कबूल किया, बेटियां भी मुसलमान हुई, तो उसने कहा कि अपने बेटों को कि इनको तलाक दे दो। हम तो जरा शोहर की बात नहीं बर्दाश्त करते ना कि कहीं उनकी मोहब्बत का वो जो हमारे गले में एक हार डलना था वो कम ना हो जाए। वहां घर टूट गए, अल्लाह के नबी ने यह सदमा बर्दाश्त किया। फिर आप देखिए इससे बड़ा गम हमारी नजर में क्या है कि 25 साल के हैंडसम जवान लड़के की शादी 40 साल बूढ़ी करीबुल बुढ़ापा एक औरत से हो जाए। ये सदमा किसको पड़ा? मोहम्मद अरबी को पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 साल उस एक औरत के साथ जिंदगी बसर करी, ये भी माँ और बहनें होती तो रोती, हाय मेरे बेटे के तो अरमान ही मर गए, बूढ़ी औरत के साथ जिंदगी गुजारती। हजरत आयशा, हजरत खतीजा की जिंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं हुई। फिर जब वो फौत हुई, आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी जब उनसे शादी हुई थी ना, उसके बाद आप देखिए हजरत खतीजा के साथ आप कितना अरसा रहे, 25 साल रहे, आपकी उम्र मुबारक क्या हो गई, 50 के बाद ये सारी शादियां हुई हैं। और उसमें से भी एक खास ड्यूरेशन ऑफ टाइम 8-9 साल, आखिरी दौर जब जिसमें आपकी बीवियों ने आपको चूज कर लिया था, फिर कोई शादी नहीं हुई। आज क्या तसव्वुर देते हैं 11 शादियां, कोई ऐसी तो नहीं है कि एक 25 साल का एक प्ले बॉय और हर दिन उसकी नई शादी हो रही है और फ्लर्ट चल रहे हैं और हर फ्लर्ट के नतीजे में नौज भी लग कि अपनी ही जिसको लोग बहू समझे उससे शादी करो। कि वाहिद मुकाम है कुरान का कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ कि अगर अल्लाह के नबी ने कुरान लिखा होता तो सूरह अहज़ाब शुरू से ऐसी तो ना होती। कि अल्लाह नबी हमें पता है तू डर रहा है लोगों से, कि जब हुक्म मिलेगा जैनब से शादी का तो तू डरेगा कि लोग बातें करेंगे, लोगों की बातों से नबियों को भी खौफ आता था। लेकिन हुआ इम्तिहान, आजमाइश हुई। दूसरी बीवी जो मिली अल्लाह के नबी को, इसको भी आपका सदमा ले ले, हजरत सौदा, उम्र में बड़ी स्याह रंग की भारी जिस्म की औरत, सौदा कहती काली औरत का, उनके साथ रहे। ये तो बाद में जाके हजरत आयशा से जो शादी थी वो तो एक लोगों को उसकी हिकमत नहीं समझ आती ना इस वक्त हमारा मौजू है, लेकिन देखिए अल्लाह के नबी को हर तरह का सदमा पड़ा। इससे बड़ा भी कोई रिश्तों का सदमा होगा कि वो चचा जिससे आप जान से ज्यादा प्यार करते हैं वो आप इस्लाम के बगैर दुनिया से जा रहे हैं। अगर आप सब कुछ कर रहे होते और अपनी मुसीबतों को हटाते, सबसे पहले तो अबू तालिब को ईमान देते, नहीं दे सके। चलिए ये तो थे जाती इम्तिहानात, इसको पीछे कर दें। अब आ जाइए आपके दीन के इम्तिहान जो हम सबको बड़े चुभते हैं। हम तो सिर्फ इसलिए नहीं सीरियसली पढ़ना चाहते कि इम्तिहान देना पड़ेगा, तर्जुमा याद करना पड़ेगा, असाइनमेंट करने पड़ेंगे। अल्लाह के नबी के जो इम्तिहान थे वो मक्के की गलियों में भी लिए गए, वो मक्का से ताइफ के रस्तों में पैदल चला के भी लिए गए, और वहां उन लड़कों की तरफ से पत्थर फिकवा के भी लिए गए, जूतियां खून से चिपक गई। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फकुव्वती व किल्लत हीनती व हवानी अला नास। दुआए ताइफ आप सीख चुके हैं क्लासों में, किस तरह आप तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि अल्लाह मैं अपने गम का शिकवा सिर्फ तेरे सामने कर सकता हूँ, बता मुझे किसके हवाले करता है। ये आजमाइशें आप पे दीन की वजह से पड़ी। मक्का से ताइफ पैदल गए, तकरीबन 200 किलोमीटर का शायद सफर है। आज आप सोचिए फिर मक्का में जो पत्थर पड़े, अपने बेगाने हो गए, सादक और अमीन का लकब जो था वो काहिन और मजनू में बदल गया। तो इन आजमाइशों को देखते जाएं, मक्की दौर की आजमाइशें, फिर आमुल हुजन, घर का सहारा बीवी फौत हो गई खतीजा, बाहर का सहारा अबू तालिब फौत हो गए, चोट पड़ गई। आपके बच्चे का इंतकाल हुआ, कुफार ने बातें शुरू कर दी, अब बे औलाद ही मरेंगे नऊज़ुबिल्लाह, ये नस्ल नहीं चलेगी। कहीं ना तो ना कल को सिर्फ फसल रब्बी का वनहर। तो आप देखिए तो लिस्ट लंबी है। और जो मदीना में आने के बाद आप पे इम्तिहान पड़े, बदर का इम्तिहान, उहद का वहां इम्तिहान, खंदक के मैदान में तो जाने से पहले आपने खुद लोगों के साथ मिलके इतनी गहरी खाई खोदी कि पेट पे एक नहीं दो पत्थर बांधने पड़े भूख बर्दाश्त की। लन नब्लुवन्नकुम बिशय मिन अल-खौफ वल-जुई। हमने तो आज इस दीन के लिए कोई तकलीफें भी नहीं सही, इसीलिए हमें इसकी कदर कोई नहीं। हम कहते हैं रिलैक्स, बस एक खूबसूरत से माहौल में बैठ के एक दीन का छोटा सा नाम ले लो। हमारे अंदर अभी वो रूह नहीं आई। अल्लाह के नबी तलवारों के साए तले जीते थे, इतनी खौफ और परेशानी की कैफियत थी कि एक रात आपने कहा कि कोई है जो आज की रात मेरे घर के बाहर पहरा दे और मैं थोड़ी देर आराम से सो जाऊं। हम तो एक रात जरा कोई जाग लें तो अगले दिन हम जोहर तक सोते हैं कि नहीं जी मेरी नींद नहीं पूरी हुई। हमारा तो ये हाल है। आज हमने इस दीन के लिए कितनी तकलीफें दी, अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, मक्का से मदीना आए और रोते थे और कहते थे कि मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता अगर मुझे लोग उठा ना देते। अपनों से जुदाई, के अल्लाह के नबी का घर नहीं था मक्का में, था ना? क्या आपका बचपन वहां नहीं गुजरा? और हम भी अपने घर छोड़ के आ जाते हैं इन मुल्कों में, लेकिन उम्मीद है कि हमें एक के बदले में 150 मिलेगा। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना गए, पता भी नहीं था कि आगे जाके होना क्या। 3 रातें जो आपने गारे सौर में गुजारी, वल्लाह ही अगर इम्तिहान लेने दीन के नामों पे, सिर्फ उसको हम अपनी जिंदगी के सारे टेस्ट रख लेना, तो हमें अल्लाह के नबी की वो गारे सौर की 3 रातों की आजमाइश इन सबसे बड़ी लगेगी। पुरानी गार, कीड़ा, सांप, आप उस गार में और पैदल गए। आज भी अगर आपको कभी मौका मिले ना, एक तो ज्यारतों के लिए लोग जाते हैं, आप इस आजमाइशों के तौर पर जाके जरा मक्का से पैदल जाइए गारे सौर तक। और जब खौफ भी है कि दुश्मन आपके पीछे और कहीं पकड़े गए तो सौ ऊंटों की कीमत में हमें पकड़ लिया जाएगा, और भूखे और प्यासे भी दिन में सिर्फ एक या दो बार, शाम को, रात को, बल्कि एक बार आमिर बिन फुहैरा की बकरियों का दूध पिलवाया जाता था, जो अबू बकर ने अरेंज किया हुआ था अपने बेटे के जरिए। रात को वो आके दूध पिला जाते थे, या अस्मा बिनते याकू अबू बकर जो थी वो थोड़ा सा खाना रात को लेके कभी आ जाती तो वो खाते। हमारा तो चाय, एक कप चाय का कप मिस हो जाए ना तो हम कहते वी कैंट फोकस, नहीं आज क्लास नहीं हो सकती, आज नहीं मैं पढ़ सकती, मैं अपसेट हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मैं खुश हूँ। मुझे बताइए कि हम इस दीन के लिए कुर्बानियाँ कब देंगे? आज ये जो दीन के हालात है ना दुनिया के, ये हमारी दीन के लिए कुर्बानियाँ ना देने की सजा है। क्या अजीब लोग थे कि जब उनका इम्तिहान लिया जाता था उस वक्त भी वो खुश होते थे। अल्लाह ने कह दिया रदी अल्लाह अन्हुम और रदुआन, क्योंकि अल्लाह के नबी की आजमाइशों के साथ ही सहाबा की आजमाइशों की लिस्टें शुरू हो जाती हैं। आरों पे चिल्लाए गए, पत्थरों पे लिटाए गए, हजरत बिलाल की आजमाइशें देखे दीन के नाम पे, लोहे की जैकेट पहना के उनको मक्का की तपती धूप में खड़ा कर देता था उनका मालिक उमर उमैया, नीचे पत्थरों पे लिटा के ऊपर भारी पत्थर रखवाता, वो पत्थर सुराख कर देते जिस्म के अंदर। और एक सहाबी है, वो किसी ने उनसे कहा कि जरा आप, हजरत उमर ने एक मौके पे कहा जरा आपने इस्लाम की कहानी तो सुनाए, तो उन्होंने कहानी सुनाई नहीं, सिर्फ पुश्त से कपड़ा उठा दिया। तो सहाबी कहते हैं कि देख के हमारी चीखें निकल गईं कि घड़े पड़े हुए थे, सुराख पूरी कमर बैक में ऐसी थी जैसे वो बम्स नहीं पड़े होते। कहा ये क्या? कहा कि मेरा मालिक मुझे पत्थरों पर लिटाता था, मेरी जिल्द में सुराख हो गए। और एक साबित है कि बच्चे उनके जख्मों में जो उंगलियां डाल डाल के खेला करते थे। मैंने और आपने क्या तजमाइश ली? हम तो छोटी सी बात पे कहते नहीं, बस टू मच। हम सब अपने पर पूछे, क्योंकि ये मौजू बहुत तवील है और मेरा वक्त पूरा होने वाला है, मेरे हिसाब से 1 मिनट बाकी है।
मैं
लेकिन
स्टार्ट कर
हम
सकती हूँ।
अपने ऊपर लेके सोचे, मैं आजमाइश को कहाँ लेती हूँ? देखिए आजमाइशें दो तरह की होती हैं, एक तो अल्लाह की तरफ से आती है, एक लोगों की तरफ से बातों को आजमाइश समझते हैं। सूरह अनकबूत पढ़ लीजिए, अल्लाह ताला कहते हैं लोगों में कोई ऐसा है कि जो लोगों की बातों को अल्लाह का अजाब समझता है, यानी उसके लिए इतना ही बहुत बड़ा अजाब है कि लोग मुझे कह देंगे तुम मौलवियानी लग रही हो, तुम बहुत नेक हो गई हो, मासी लग रही हो, तुम ये क्या हो गया, तुम तो ऐसी वैसी। और उनका हाल ये था कि अल्लाह उनको आसमान से कहते थे रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। उनके लिए अल्लाह सूरह हशर आयत नंबर 8 में कहते उलाएक हुमुस सादिकून, वो सच्चे लोग थे, उनका ईमान सच्चा था। सूरह हशर की आयत 9 में गालिबन आता है उलाएक हुमुल मुफ्लिहून, वो कामयाब लोग थे, वो मुराद को पहुंचे। सूरह अनफाल आयत 4 में अल्लाह ने सहाबा के लिए फरमाया उलाएक हुमुल मोमिनून हक्का, वो सच्चे मोमिन है, ठुके हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ उनकी जुबान की नोके नहीं कहती थी, उनके दिल कहते थे। देखिए आज इतनी जरूरत है दीन फैलाने की, और हम कितने आराम में सोच के कहते हैं नमाजें तो पढ़ती हूँ ना, रोजे तो रख लिया, बौर क्या करूं। और नेकी करना आज भी आसान है, शर्त एक है कि उस नेकी करने के वह तकलीफ ना आए। छोटी सी आजमाइश आती है ना तो हम सोच बदल के रुख बदल लेते हैं। वो कहते हैं ना कि एक शख्स था तो उसने नई नई नमाजें पढ़नी शुरू की, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई कि उसकी भैंस मर गई। जितनी नमाजें पढ़ता जाने लगा कहने लगा नहीं मैं नहीं ये दीन ले सकता। एक बच्चा बच्चा और रात को वो तंग कर रहा था तो उसको गुस्से में कहने लगा कि देखो 2 रकतों की मारो तुम भी मर जाओगे, चुप करके बैठो। यानी वो तो देहाती था। हम अपने ऊपर ले सोचे, अगर मैं इस दुनिया में आज चल रही हूं फिर रही हूं और अल्लाह ने मुझे क्या नहीं दिया। देखिए मैं अपने ऊपर लेके कहती हूँ, और मेरा आपके बारे में भी ये गुमान है कि हमारे ऊपर से एक दफा 1 घंटा 12 मिनट से बात हो रही है, एक दफा बिजली नहीं गई, एक मक्खी ने हमें नहीं सताया, एक दफा इंटरनेट का कनेक्शन नहीं लूज हुआ जो लोग घर से सुन रहे हैं, हमें किसी मासी ने आके नहीं सताया, हमें कोई बाहर से रिक्शे की पटपट की आवाज नहीं आई। ये वो सारी आम चीजें हैं जो हम अपने मुल्कों में देखते हैं। तो जब इतनी नेमतें हैं तो फिर हम इसका शुक्र कैसे करें? मेरे और आप जैसे लोग अगर आज के दौर में अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बनकर दुनिया में नहीं घूमेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को पाक नहीं करेंगे तो मुझे बताइए ये काम कौन करेंगे? ये इमाम काबा भी नहीं करेंगे, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं होगा कि इधर मुसलमान रहते हैं। आज इस मौजू का इख्तिताम मैं इस बात पे करूंगी कि हम सब अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि आपके साथ बाहर से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, हर एक अपने आप को अपनी जगह पे, जिस मुल्क से आप सुन रहे हैं, बल्कि लिखें रूम में कौन किस जगह से सुन रहा है, जहां से सुन रहे हैं आप कहें मैं वहां अल्लाह के दीन की नुमाइंदा हूँ। ये यूएसए का नाम लिख रही हैं, इंडिया से सुन रहे हैं, ये सना यूके से सुन रही हैं, यूएसए से, नॉर्वे की आईडीज मेरे सामने हैं कुछ, लंदन से सुन रही हैं समन, आप आयरलैंड से सुन रहे हैं, या लफ्ज़ बोल दिया ताकि यादगार रहे। हम सब इस वक्त इस जमीन के खित्ते में है, कोई ये दुनिया का बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हिस्सा दुनिया से, कम्युनिकेशंस है। कल ही लोग सुना रहे थे कि यहाँ कोई मिठाई की भी दुकान नहीं है, और जो है वो भी यूके से मिठाई आती है। आप सोच सकते हैं कि हम दुनिया के कितने आइसोलेटेड, जिसे मैं आयशा कह रही हूँ कि मैं मलाइशिया से सुन रही हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मैं और आप आज जहाँ इस बात के लिए मिले, इसी बात से हमारी मोहब्बतें हैं ना। अब मैं तो चली जाऊंगी एक आध दर्स और दे के आपको, खाक अदा हो गया ये जमीन के टुकड़े, और जो बाहर आप देखते हैं अल्लाह की कुदरत। और जो लोग हैं, क्या मेरा और आप नाम फैला कैसे? अल्लाह के नबी तो अरब में आए थे, मक्का से मदीना गए, और आपकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए। या जीरान, इराक, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, अगर नक्शा थोड़ा सा याद है, इधर तक इस्लाम कैसे पहुंचा? अगर अल्लाह के नबी की दुनिया से जाते ही सहाबाए कराम मक्का और मदीना के हो जाते, मदीना जो मक्का से आए थे वो वापस मक्का चले जाते कि चलो शुक्र है नबी गए, लीडर गए, चलो वापस अपनी दुनिया में जाके अपनी जायदादें देखते हैं किसने उसी को कब्जे में तो नहीं कर लिया। और मदीना में जो रह जाते वो अल्लाह के नबी के रोजे के बाहर जाली को चूमते और रोते और नाते पढ़ते, हाय मोहम्मद चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या ये इस्लाम फैलता? एक मैसेज दे के दुनिया से गए थे अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पे, और उसके तकरीबन 3 साढ़े 3 माह के बाद आप दुनिया से गए, और वो यही था कि लोगों मैंने अपना पैगाम दे दिया। क्या मैंने मैसेज दिया हल बल्लग था? क्या मैंने अपने नबी होने का, अल्लाह के नबी की बात कर, अल्लाह के बंदों को उन अल्लाह का पैगाम दिया? सब ने कहा दे दिया। अदईता बल्लगता व अदईता, बता भी दिया और हक भी अदा कर दिया। फिर आपने कहा अल्लाहुम्मा अशहिद, अल्लाह गवाह रहना। फिर आपने लोगों से कहा अब तुम में से जो हाजिर लोग हैं, और 1.25 लाख का मजमा था तकरीबन, कहा तुम में से जो हाजिर हैं इस पैगाम को उन दुनिया तक पहुंच जाओ जहां लोग मौजूद नहीं, गायब लोगों तक पहुंच जाओ। तुम्हें जिम्मेदारी दे के जा रहा हूं कि तुमने फर्स्ट हैंड मुझसे सीखा है, अब जाओ दुनिया को सिखाओ। और आपको था कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद कुछ रोज के बाद मदीना खाली होने लग गया था सहाबा से, कहते थे नहीं अल्लाह के नबी की नसीहत याद है कि दुनिया को ये पैगाम देना है। माज बिन जबल और जो बड़े बड़े जो इल्मी शख्सियात थी वो मदीना से निकल गई। मदीना में सिर्फ वो सहाबा और कबायर रह गए थे जो बड़े सहाबा थे जिन्होंने मदीना का इंतजाम चलाना था। कहने का मतलब ये कि हर बंदे का रुख, और आप पढ़िए ये हिस्ट्री पढ़ें जाके, ये दुनिया में इस्लाम कैसे फैला, जिधर मुसलमान गए वहां थोड़े दिन रहे और लोगों से इंटरेक्शन किया, उनका किरदार, उनका इखलाक, और अपने दीन पे जमे हुए फॉर्म, वहीं इस्लाम आ जाता था। रात जाते नमाजें पढ़ते थे जब जमात से, तो उस कबीले और कुंबे के लोग आके हैरान होते थे ये क्या हो रहा है, तो उनको थोड़ी सी तबलीग करते और लोग मुसलमान हो जाते। और सिंध में इस्लाम कैसे आया? मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान, ताइफ से उठा था मोहम्मद बिन कासिम, और उसके अखलाक और किरदार की वजह से वहां लोग मुसलमान हुए। जो पहले राजा दाहिर के जुल्म से तंग थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को वोट दिए थे, मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं ने वोट दिए थे। कहते थे हमें ये पता है कि ये अच्छा इंसान है, ये हुक्मरान बनेगा तो हमें इंसाफ मिलेगा। हिंदुओं ने उनका बुत बना के अपने मंदिर में रखा हुआ था कि इतनी सिफात वाला शख्स कोई इंसान नहीं हो सकता, ये भगवान के ही रूप है, नाउजुबिल्ला। आज हम मुसलमान चलते फरते इन जमीन के टुकड़ों पे अगर अपने दीन पे अमल करने वाले होते और हों, तो फिर देखिए ये तो मिनटों की बात है। मैं सोचती हूँ अक्सर, जिक्र करती हूँ, मेरे दिल में इसका दर्द बहुत है, इसलिए जैसे मैं घरेलू माहौल पे बात करती हूँ, इस तरह मुझे उम्मत के मौजू पे भी बात करना अच्छा लगता है कि आज क्यों नया कोई मुल्क इस्लाम पे नहीं आ रहा? कब आखिरी किसी मुल्क आपने सुना? मैंने अपनी जिंदगी के पीछे देखो 10-12 साल पहले हमने सुना था कि रशिया की जंग जब अफगानिस्तान से हुई, फिर उसके एंड पे रशिया टूटा और उसमें 5-7 उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये रियासतें इस्लाम के नाम पे बन गई। आखिरी हमने यही सुना हुआ है। कि रशिया मुसलमान हुआ या टूट गया, जो भी हुआ। सहाबा का दौर देखिए, हर कुछ महीने बाद खबरें आ रही थी, रोम फतह, कैसर किसरा की गलबा आ गया, उधर ईरान, फारिस, बगदाद मुसलमान हो रहे थे। क्या उस दौर में हथियार ज्यादा थे? क्या उस दौर में मुसलमान ज्यादा थे? टेक्नोलॉजी ज्यादा थी? साइंस ज्यादा थी? कुछ भी नहीं थी, एक चीज ज्यादा थी, ईमान ज्यादा था, और ईमान पे अमल ज्यादा था। यकीन करें कि आज हमने लोगों को कुफर पे रखा हुआ है। आज अगर ये खूबसूरत इस्लाम हम लोगों तक दिखाते तो ये बेचारे कुफर की मौत ना मरते। और ये जो आज हम पे जुल्म और सितम टूट रहे हैं ना दुनिया में, ये रिग्रेट है, वो रिएक्शन है कि तुम हमें नहीं देते, हम तुम्हें भी नहीं रहने देंगे। देखिए, ये मेरा सेलफोन अगर कोई पकड़ के भाग जाए इधर से, तो मैं कहूंगी कि ये मेरा फोन है, आपने क्यों लिया? तो मैं अपना ये फोन उससे छीनने में, हो सकता है इस फोन को तोड़ दूं कि तुमने मेरा फोन क्यों लिया, मैं तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगी। हमने ये खूबसूरत इस्लाम छुपाया, हम पे इस्लाम के नाम पे ये मुश्किलें आई। आज जो हो रहा है ये कोई नई चीजें नहीं हो रही, हम तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इतनी बातें कर रहे हैं, हमें गैरों ने कहा मारना है। तो जरूरत है कि हम सब इस वक्त अपना मुहासबा करें, सबको भूल जाएं, सिर्फ आप अपने इस 5 से 6 फुट के जिस्म पे आ जाएं कि मैं क्या कर सकती हूँ। पहली बात है, क्या मुझे खुद इस्लाम पता लग गया? क्या अल्लाह की पसंद, उसकी नापसंद, इस्लाम के बेसिक अकायद मुझे समझ है? फिक के नाम पे नमाज रोजा ठीक कर रही हूँ? खुशी गमी जीना मरना सब आता है? एक दफा इस अल्लाह की किताब को सीख लिए? कल भी आपको ट्यूटोरियल दिया था कि जब तक अरबी से उर्दू में कुरान नहीं पढ़ेंगे, आपके मेरे दिल की दुनिया नहीं बदलेगी। तर्जुमों से वो बात तो बनती नहीं, मेरी सारी बात को कोई पीछे बैठ के अगर आयरिश जुबान में चेंज कर दे, फायदा तो थोड़ा सा उठा लेंगे लेकिन उनको मजा नहीं आएगा। इसलिए हम कुरान पढ़ तो लेते हैं, बरकत के असूल के लिए तवज्जो नहीं होती। तो जरूरत है इस बात की कि हम अपने आप को समझे, कर लिए तो अब हेल्प करें, फिर अब दूसरों तक पहुंचे, जोड़े। और आजकल कितना आसान है, लोग इतना चल के जाते थे। जाबिर ने ऊंट लेकर 1 महीने का सफर किया था, फिर मक्का से शाम पहुंचकर एक हदीस सुनी थी अब्दुल्ला बिन उनैस से, और उन्होंने हदीस भी ये सुनाई थी कि जो इल्म की तलब पे निकला, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। और जन्नत का रास्ता क्या? सबीलुल जन्ना। हमें जाना पड़ता है एक महीने का सफर करके इल्म सीखने? हमें तो मेरा लिए 1 मिनट सिर्फ अपने कंप्यूटर तक जाना पड़ता है कंप्यूटर सीखने के लिए, फिर भी हमारे लिए मुश्किल है। ऐश कोश हो गया आज का मुसलमान। हमारी नस्लें आज क्यों डल हो गई? क्योंकि हमने उनको बहुत ऐश सिखा दी, हमने उनके इतने नाज नखिए, फिर उनका वेट गेन हो गया, फिर खाते हुए जंक खाते पीते अंदर कितनी ज्यादा उनके चीनी चली गई कि वो परेशान है और हम किसी काम के ना रहे। इल्ला माशाल्लाह, जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। अपनी गोदों को हरा करें, अपनी नस्लों को आबाद करें। जितने इन मुल्कों के एहसानात हम पे हैं, अमन चैन सुकून से जी रहे, इनको इस्लाम की कोई एक छोटी सी एक बूंद तो हम देखे जाए, उनको कहाँ देंगे? अभी तुमने खुद नहीं पढ़ा, अभी तक तो हमारी अपनी मुस्लिम फौज ही नहीं तैयार हुई जो इल्म सीखने वाली हो, दूसरों तक कहाँ पहुंचेंगे? तो जरूर इस पे सोचें। और जिसको काम करना होता है ना, वो पूछता है कि हम क्या करें। दूसरों को कोई कहे ना ये कर दो, कहेगा फारिग नहीं हो, तो जिसके अंदर तड़प होती है वो इस काम को करता है। आखिरी हदीस सुनाकर इंशाल्लाह आपको अब थोड़ा सा मौका देंगे। तिमजी की रिवायत, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इजा अराद अल्लाह बि अब्दिही खैरन, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का मामला करने का इरादा करता है, अज्जल लहुल अकूबत फी दुनिया, तो इसकी गलतियों की सजा इसे दुनिया में जल्दी दे देता है। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी पहचान जाता है ना कि बीमारी को जिस्म में फैलना है, तो उसको फैलने से पहले ही पकड़ता है और उसका ऑपरेशन कर देता है। तो दुआ करते हैं कि आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला हमें उससे सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। अब आप में से कोई सवाल, कोई बात, या जो भी चाहें, और हम फारिक खत्म भी कर सकते हैं यहाँ दुआ के साथ, जो भी आप चाहें। जी सिस्टर, आप वालेकुम अस्सलाम।
आपने जिक्र किया
ऑनलाइन पे भी लिखना शुरू कर दीजिए, टेक्स्ट खोल दें, जो भी आपके कमेंट हैं या सब।
आपने जिक्र किया कि रसूल पाक को सदमा हुआ जब जनाब खदीजा से शादी हुई। मैं सिर्फ सर छोटी सी बताना चाहती हूँ कि वो सदमा कैसे, जब उन्हीं में से तो उनको जनाब फातिमा मिली।
जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और अच्छा हुआ कि आपने क्लियर कर लिया। कि मैंने नबी सल्लम के हालात को डिस्कस करते हुए कहा कि 25 साल के एक लड़के की शादी 40 साल से हो गई, उनके लिए सदमा नहीं था। हम उस वक्त, अभी आबाद में भी रिकॉर्डिंग चाहे तो मैं सुनवाऊँ, ये कहता कि फी जमाना हम उस बच्चे पे रहम करेंगे कि जिसका जवानी में बूढ़ी औरत से शादी हो, आपके लिए सदमा नहीं था। इसको इस तरह समझ लें कि जैसे हमारी फैमिली में ऐसा हुआ था कि एक लड़की की हस्बैंड की शादी के 2-2.5 साल बाद शादी डेथ हो गई। अब वो लड़की ऐसी थी जिसको आप सिंपल सा कह लें कि हाथ लगाए मैली हो, मेरे नहीं ख्याल में इतनी खूबसूरत कोई लड़की और कोई खानदान की होगी। उम्र भी वही थी जो होती है, 2 साल में लड़की कितनी को बड़ी होगी, और उसी मर्द से बच्ची पैदा हो गई थी। जब बच्ची पैदा हुई तो उसके बाद उसी लड़का जो फौत, उसके छोटे भाई ने जिसका देवर था, उसने कहा कि मैं इससे शादी करूंगा। अब हो गई, लेकिन बाद में मैंने सुना ऐसे ही किसी मौके पे कि उसकी माँ बहन ने कहा साढ़े हमारे तो लड़के की किस्मत हो गई कि इसको शादीशुदा लड़की से शादी करें। और यकीन करें वो कई कुंवारी लड़कियों से खूबसूरत और भरपूर लड़की थी। तो हमारे कल्चर की ये बात थी। ठीक है जी, और कोई बात? सीखा क्या? मुझे तो कमेंट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुहासबा, आपने क्या सीखा? पहले तो हमारी जो होस्ट है इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे, दुआ भी करेंगे कि आज इन्होंने हमें घर में मौका दिया और हम सब मिले। तो सिस्टर, आप क्या पूरे दर्स के दौरान सोच रहे थे? कोई आपकी फीलिंग शेयरिंग जो भी कहना चाहे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कोई? नबीला, आप क्या सोच रहे थे?
दादाजी आई आपने कहा कि हम कहाँ से
खुल गई
पढ़े
आंखें? दुआ करें मेरी आंखें खुल जाएं। देखिए जब कोई दुनिया से जाता है ना, तो हम कहते हैं कि आज उसकी आंखें बंद हुई हैं। बिलीव मी, आंखें आज बंद है, खुलेंगी उस दिन जब मौत का पर्दा आएगा सामने। जी आप कुछ कहिए, नाम दोहराते जब मुझे याद हो जाए।
काबिया,
जी काबी।
मतलब आज का फिर से यही कि आई ओपनर था, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला का यकीन जितना आपके अंदर पैदा होगा उतनी दुनिया की मुश्किलें आप तक मुश्किलें नहीं लगेंगी, और आपको अगली दुनिया के लिए तैयारी करने में आसानी होगी। अगर आपको इस दुनिया की परेशानी परेशान करती रहेगी तो आपको दूसरी दुनिया की परेशानी के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा।
जी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस पे एक अक्सर मिसाल देती हूँ, सिर्फ इस सोचते कि आपने नहीं सुनी होगी इसलिए दे रही हूँ, वरना कई जगह दी हुई है ये भी, कि एक बाप अपने बच्चों को लेकर किसी जंगल में जाए। अब उधर कहीं चींटियां हैं, कहीं मकोड़े हैं, कहीं कुछ छोटी छोटी एंट्स हैं, तो उसको फिक्र क्या होगा कि मेरे बच्चों के पाँव पे कोई चींटी ना चढ़ जाए, बचाएगा ना उनको। इतने में अगर उसी जंगल में शेर आ जाए तो क्या बाप को चींटियां याद रहेंगी? वो किस चीज से अपने बच्चे को बचाएगा? शेर से। आप इसको अपने ऊपर लें। हमारे बच्चों के जितने मसले हैं ना, इधर दाखला, ये पढ़ जाए, नंबर आ जाए, शादी हो जाए, जॉब मिल जाए, कैरियर हो जाए, ये चुनौतियां, अगर हम हमें अपने बच्चों की आखिरत नजर आ जाए। कभी सोचिए कि हम अपने बच्चों की सिर्फ दुनिया बनाना चाहते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोचते हैं ना। इस जुमले को चेंज करें, मेरे बच्चों के मरने के बाद उनके साथ क्या होगा? मरना तो है, तो इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। जी ये ऑनलाइन पे ये पूछती हैं कि आजकल को जो भी पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए कोई बेहतरीन बेहतरी की कोई दुआ दें। इसकी दुआ ये कि अहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे और हमें हमारे गुनाहों पे ना पकड़। और बहुत सारी ऐसी दुआएं मौजूद हैं, मुहासबे के साथ करें। दुआ तो खाली लफ्ज होते हैं, असल तो मुहासबा है कि अल्लाह तो हमें अपनी इसलाह की तौफीक दे, हम सीधे रास्ते पे आए, तो तू हमें अपने गजब और अकाब से बचा। जी सिस्टर, आपकी तरफ से जासमीन।
जी आप तो कहती हैं कि बच्चों की इस्लाह और बुनियाद और एक उनको देना बहुत चाहता हाथ, मेरा हाल अंतरी मुस्लिम था खातून, ये चाहती है कि मेरा बच्चा एक अच्छा मुस्लिम बने, लेकिन बात का ऐसा होता है कि समझ नहीं होती। हमारा जैसे दस
हमें के
साल
बच्चों
गुजर
को
गए, मेरे घर में अपनी एग्जाम्पल देती हूँ,
सेम जी।
समझ आते आते 10 साल गुजर गए, उस दौरान तो बच्चा हो गया 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, होश आई 15 साल के बाद, सोचा अब बच्चों की बुनियाद बना दूंगा, बच्चे का तो जहन खत्म हो चुका था, समझाने समझाने में तो इतना वक्त निकल गया कि जब उसको समझाने का टाइम था उस वक्त का तो खुद को समझ नहीं थी तो उसको क्या समझाते। अब वो जब जहन ही इतने पुख्ता हो गए, अब एक बच्चे को जब 2 या 3 साल के बच्चे को समझाना था, आज मेरी बेटी एग्जाम्पल बनी बैठी आपके सामने की कल आई थी तो स्कार्फ के बगैर,
आज वो बैठी इस माहौल में तो स्टाफ लेके बैठी
किधर बैठ माशाल्लाह मैं देख रही थी इसको इधर मुझे दिखी नहीं तो बेटा आप इधर आके अबूढ़ी हो गई हैं आके इधर नीचे बैठो हाँ जी आपकी बात मैं समझ गई
तो जब देर हो जाती है तो मैं अपनी मिसाल ही देती हूँ कि मैं ख्वाहिश करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे समझ ली तो मैं उससे ज्यादा समझ अपने बच्चों को मुझे आखिरत का खौफ जितना अपने लिए डराता है ना उससे कई गुना ज्यादा वही आपकी बात अभी थोड़ी देर आपने पहले की थी कि बच्चों की आखिरत नजर आने लग जाए मुझे उससे ज्यादा खौफ अब अपने बच्चों के लिए डर लगता है लेकिन जब ये समझाने का जो टाइम आया वो बड़े हो गए अब उनको कैसे समझा
जी ये असल मसला तो ये है ना जो आपकी
असल
पूरी
मसला तो ये है जब वक्त निकल गया
वक्त नहीं निकला भी इनका सवाल आप सबने सुन लिया ऑनलाइन से जो सुन रहे हैं उनके लिए दोहरा देती हूँ कि बच्चों को जिस वक्त समझाना था तो तब खुद समझ नहीं थी अब समझ आई है तो बच्चे बड़े हो चुके हैं अब क्या करें इस सवाल का जवाब मैंने कई जगह और हर मुल्क में दिया अल्लाह के हुक्म से और वो ये है कि अपने ऐसे बच्चों को बिठाएं और उनसे माफी मांग लें ये लो बच्चे अब दिमाग से नहीं मानेंगे ये आपके दिल से मानेंगे आप इनके दिल को पकड़ें पहले कन्फेस करें कि बेटा मैंने अच्छी माँ होने का हक अदा नहीं किया मैंने क्यों नहीं किया इसलिए कि मैं खुद मुझे नहीं पता था अब समझ आई है तो अब गिल्ट है आओ मिलके इस सफर को शुरू करते हैं और तब्दीली का आगाज जो है ना वो दिल से होता है और दिल बदलते हैं इस कुरान से अल्लाह के नबी का कमाल क्या था जिस माहौल में आप पैदा किए गए थे आपको पता कि वह शराब कबाब सूद रिश्वत हर चीज चलती थी शिर्क तो अपनी जगह था उसी के सारे ये तोहफे होते हैं आपने लोगों का तज़किया किया जवान बच्चों को सिखाने का तरीका तकरीरें और वाज नहीं होते हुक्म नहीं है अब आप उनको साथ लेकर चलें बल्कि मैं आपको रेकमेंड सबको ही करूंगी अगर आप चाहते हैं पेरेंटिंग ए टू जी उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स थे सब टॉपिक उसमें एक टॉपिक है ग्रोइंग बच्चे यानी टीन एजर्स के साथ कैसे मामला करें आप वो फाइल सुने इंशाल्लाह आपको उससे बहुत कुछ मिलेगा और अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहे ना ये घर जब बन रहा था समझ नहीं थी कि यहाँ क्या हो वहां हो अपनी सोच से तो किया लेकिन बन गया अब आपको रहने के बाद एहसास हुआ है कि ये ठीक नहीं है ये कमरा छोटा है वो बड़ा है ये नहीं ये टॉयलेट नीचे होना चाहिए था गेस्ट रूम नीचे भी होता हर वक्त ऊपर नहीं जाया जाता क्या करते हैं फिर आप अब ये भी नहीं है कि आप इस घर को छोड़ दें एक नया घर बना लें मुमकिन नहीं है इसी को रेनोवेट करना है थोड़ा सा मशवरा करके किसी इंजीनियर को बुलाएंगे ये दीवार निकाल दूं ये दरवाजा इधर की बजाय इधर कर दूं अब हमने अपने जवान बच्चों को रेनोवेट करना है और उसके लिए याद रखिए कि घर में रह के जब रिपेयर्स होती हैं इंतहाई मुश्किल आता है हर तरह के डिसऑर्डर के लिए तैयार है एक्स्ट्रा केयरफुल डेकोरेशन पीसेस उठा देते हैं हम लोग मट्टी ना डल जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए कवर करते हैं पर्दे उतार लेते हैं कारपेट उठा देते हैं इतनी हिकमत और समझदारी के साथ अपने बच्चों को इस दीन के कमरे में एडजस्ट करें कि बल्कि वो इंजॉय करें इसका बेस्ट तरीका यह है कि उनके साथ दोस्ती आप उनके सामने कोई बहुत बड़े 30 मारखानी बन के दिखाएं कि मैं बहुत नेक हूं करो उठो दे दो ये करो वो करो हुक्म के साथ तो बात करनी नहीं वो तो किसी से भी नहीं करनी ठीक है करना के आप उनके साथ बैठे इस्लाह का तरीका जैसे इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या देती हूँ कि हम सब अपने घरों में एक फैमिली टाइम रखें सारा दिन सबकी ही लाइफ बिजी है यहाँ इन मुल्कों में बच्चे कहेंगे शौहर कहेंगे कोई वक्त तो ऐसा होना चाहिए 24 घंटे में कि पूरी फैमिली इकट्ठी बैठे क्या हर एक को इसका वक्त मिल जाता है बाद दफा तो देखा गया कि शौहर घर में आते हैं तो बच्चे खाना खा के घर में होते हैं साथ नहीं बैठते आज ये भी एक हमने बहुत गोरा सिस्टम सीख लिया कि हर बंदे का अपना खाने का वक्त है पहले दौर में लोग इंतजार करते थे अब्बू आएंगे तो खाएंगे खाना आया पक्का है तो सबसे पहले अच्छा खाना है तो अब्बू खाएं बच्चों ने पहले खा लिया तो अब्बू जी के लिए क्या बचेगा और खाने का टेबल मुझे आज भी अपना बचपन से याद है बेस्ट टाइम होता था कम्युनिकेशन का प्लान जिदें करनी उधर जाना है जब छुट्टियों में ये करना है वो करना है चले आइसक्रीम खाना है इस वीकेंड पे इधर जाना है और खाने की टेबल को अगर निकाल देना तो बाद में आप देखिए सारे बच्चे एक जगह बैठते नहीं है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घर के अंदर ऐसा जरूर रखें जिसमें आपके शौहर जी आपके बच्चे जो भी घर के बुजुर्ग हैं सब मिलके बैठे और उसमें हर रोज कोई एक छोटी सी बात नसीहत वाली इस तरह की नहीं, शुरू में मोटिवेशन, और इसका पूरा तरीकेकार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के कुरान की तरतीब बड़ी प्यारी है, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातें हम सिखा कर उसके बाद लोगों को रिकमेंड करते हैं, सूरह फातिहा से तर्जमा शुरू करते हैं उनके साथ। आप कहते हैं हमारी नहीं सुनते, और वो आपकी सुनेंगे भी नहीं। माँ को उस्ताद नहीं कोई मानता, हालांकि हर माँ उस्ताद होती है। कोई रिकॉर्डिंग इंग्लिश की, उर्दू की, बीसियों चीजें अपने बच्चों के मिजाज को सामने रखें, आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। उनके साथ शुरू करें जिससे उनका तज़किया हो। सहाबा की कहानियां, नबियों के किस्से, वो नहीं रिवायती जो शुरू से सैटरडे संडे स्कूल में आए हैं सुनते। रूह वाला दीन दें। फिर दूसरा एक तरीका करें जो बहुत गैर मखसूस तरीके से आपके घरों में चेंज लाएगा। अपने सुनने के बहाने घरों में ये कुरान की क्लासेस की आवाजें आए। जब मुझे कोई स्टूडेंट कहती है ना, मैं तो बहुत फोकस होकर सुनती हूँ, मैं तो अपने हेडफोन लगा के सुनती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अपने हेडफोन लगाकर सबको महरूम कर दिया, अब तुम जो करते हो करो, मैं ये सुन रही हूँ। नहीं, हेडफोन नहीं लगाएंगे आप क्लास सुनते हुए, अगर घर में कोई है। नहीं है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, हर वक्त दिमाग वो भी तकलीफ देते हैं लगाए हुए। और अगर कोई है तो क्या आपका इतना हक नहीं इस घर वालों की खिदमत करते हुए कि ये घंटा डेढ़ दो घंटे तफसीर है, आप सब भी जो कर रहे हैं करें, लेकिन मैं ऐसे ही बैठ के सुनूंगी और आप शोर ना करें। टीवी चलता है अगर दिन में 22 घंटे, तो 2 घंटे बंद भी हो सकता है, और अगर शोर करते हैं तो क्या सारा दिन। आप सुनने के बहाने घर में बैठे भी ऐसी जगह जहां सब सुने, उनको ना कहें कि वो सुने, वो खुद सुनेंगे। आप देखिए जू ही कोई बात आपके खिलाफ हो रही होगी ना, उसमें दूर से आवाज आएगी, ये तुम्हें कह रही है तुम्हारी टीचर। होता है सर, होता है ना, अच्छी नहीं सुन। अब आप ना करें कोई गलत हो तो आपके ये सुन लें, ये बाप के लिए हिकमत से। देखिए जिस तरह कोई हार्ट सर्जरी करता है ना, सबसे मुश्किल ये जहन में आता है कि दिल भी धड़कता रहे और कट कट भी लगते रहे। हार्ट सर्जरी जिस तरह सर्जन केयरफुली करते हैं ना कि कोई रग ना कट जाए, कोई खून ना निकले, इस तरह हमने अपने घर वालों के दिलों को बदलना, धड़कते हुए। और इसके लिए दुआ और कोशिश, आपके अपने अमल में कमी ना हो। अगर आपने ये सोच लिया कि मैं इनकी गलत मानू ताकि वो ठीक माने, तो मान चुके। किस की तरफ बुलाएंगे अगर आप खुद गलत मान रहे हैं? तो इंशाल्लाह अपनी क्लासेस ज्वाइन करें, और आप देखें कि जिस जितना आप बकायदा कुरान सीखते हैं ना, उसकी बरकत भी होती है। अभी जैसे हमने पिछले तकरीबन अब तो 1.5 घंटा हो रहा है बात कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि इस घर में इसकी बरकत नहीं हुई होगी? कोई बीमारी दूर हो सकती है आने वाली, कोई एक्सीडेंट होने वाला हो सकता है, इसकी बरकत से दूर हो जाए, कितने शैतान भाग सकते हैं। कुरान जब घरों में आम होता है ना, किचन में भी। अब ये नहीं कि चिढ़ होने लगे और वो कहें कि आपको क्या हो गया, या मुकाबले पे वाजे करें, समझौता कर लें। इस वक्त अगर आप ये सुन रहे हैं तो इस वक्त फिर ये चलेगा, आप देखेंगे कि गैर महसूस तरीके से काम होगा। किचन में काम कर रहे हैं तो करते रहे, फारिग हैं सोते हुए में भी, रात को एक हमारी, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन खुलासा कह के एक सिस्टर थी, वो कहती थी कि मैं रात को लगाती थी आपकी क्लास, जब उन्होंने सीखा, वो किसी ऐसी जगह रहती थी वहां कोई लाइव क्लास नहीं होती थी। हमने उनको बताया कि आप वेबसाइट से जाएं, खुद अपने ओन पे शुरू से सबीलुल जन्ना को शुरू कर दें, और जो भी आपको हेल्प चाहिए होंगे हम करेंगे। उन्होंने इस तरह से शुरू किया कि वेबसाइट से सूरत फतेह से शुरू किया, कहती रात को शाम के वक्त लगाती थी, अपने कमरे में जाकर अपने बैठी थोड़ी आहिस्ताबाज करती थी, उसके दौरान ही जैसे रात को सोने का वक्त होने लगता है। कहती कि मेरे शौहर शुरू में सिर्फ इसलिए कि ये अपना सुन रही है, एक वक्त ऐसा आ गया कि वो मेरे साथ सुनने लगे। और अब कहती हम मियां बीवी जब तक रात को एक लेसन ना सुन ले, सोने से पहले हमें दोनों को चैन ही नहीं आता, मिजाज बन गया। तो इस तरह से गैर महसूस तरीके से करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। ठीक है जी, मेरे लिए काफी है, अभी और भी दर्स है, शाम का भी है ना। आप में से जो सिस्टर जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो अपने नाम लिखा दें, ये आसान होगा। मैं अक्सर सोचती जब लोग ये कहते हैं नहीं आप सुबह सुन लिया शाम को कैसे सुने, तो मैं कहती हूँ मैं भी कह दूंगी कि मैंने सुबह बोल लिया, अब मैं शाम को कैसे बोलूं। एक कर लिया अब दूसरा कैसे सुने, तो क्या एक ही सुन सकते हैं? खाना तो हर 6-7 घंटे बस सुनते हैं, तो ये मौके तो कभी कभी मिलते हैं। तो शाम का दर्स बहुत करीब है और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, और फिर वह जन्नत की तरफ, जन्नत कैसे लेना, रेस फॉर जन्ना। ठीक है, ऑनलाइन पे भी टाइमिंग्स आप नोट कर लें फ्लायर को देख कर, इंशाल्लाह उससे पहले रूम खुला रखे, खुला ही रहने दें बेशक। तो शाम का लेक्चर वाटरफोर्ड आप बोल दें कहा है, जाने आने को एडजस्ट करना चाहे, एक गाड़ी में ज्यादा लोग बैठ जाएं तो इतना मुश्किल तो नहीं है। ठीक है माशा, और इतने प्यारे सीन देखते हुए जाए। چلیے جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم استر عوراتنا وآمر اوقاتنا. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما, ہماری اصلاح کی, ہماری اسلام میں مدد فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ہم اس دین کو اپنی زندگی میں اس طرح لے کے چلیں کہ اس کا اثر ہمیں اپنی ہر معاملے میں دکھے, اور ہمارے پورے گھر والوں کو دین پہ لے چل, پھر اس سے ہمارے خاندان, ہمارے محلے, ہماری برادریوں تک اسلام پہنچے. یا اللہ اگر آج کے دور میں ہم نے اس دین کا پیغام عام نہ کیا تو کیا کفار کریں گے؟ کیا دشمنوں سے یہ کام تو لے گا کہ تیرے دوستوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا؟ یا اللہ تو ہمیں روایتی مسلمان ہونے سے بچا. یا اللہ اس قرآن سے جو روح ملتی ہے اس کو ہمیں لینے والا بنا. یا اللہ جو ایک نیا کورس ہم سب کے سامنے ہے اس وقت, اس کو قبول کرنے کی توفیق دے. یا اللہ یہ تیری طرف سے انویٹیشنز ہیں, یا اللہ ہمیں اس کو ماننے کی توفیق دے. یا اللہ اس شہر میں بھی دین کا پودا لگا دے. یا اللہ ایسی نسلیں تیار ہوں, ایسی کھیتیاں تیار ہوں کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے اثرات ہم محسوس کر سکیں. یا اللہ ہم سب کو اس کے اوپر جمنے والا بنا دے. یا اللہ بچوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو ختم کر, اور ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے بچوں کی آخرت کی لگ جائے. یا اللہ جب تک آخرت اچھی نہیں ہوگی دنیا بھی اچھی نہیں ہوگی. یا اللہ دنیاوی کامیابیوں میں کھو کر تجھے ناراض کرنے والے نہ بن جائیں. ساری خیر کے خزانے تو تیرے ہاتھ میں, تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اپنے دنیا سے جانے کے سفر کو آنکھوں میں رکھنے والا بنا. یا اللہ کیا بنے گا میرا اگر میں نے اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں تجھ سے نہ جوڑا؟ اور یا اللہ اگر میں نے قرآن نہ سیکھا تو کب سیکھوں گی؟ کیا جنت میں کوئی یہ موقع ملے گا؟ قبر میں کچھ ملے گا؟ یا اللہ ترجیحات کو متعین کرنے والا بنا. اور یا اللہ جنہوں نے بھی اس محفل کا اہتمام کیا ان کو اس کا بے حساب اجر دے. اس گھر پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ ان کے گھر کو چن لے اپنے دین کے پیغام کے لیے. یا اللہ یہاں سے باقاعدہ کلاس کا آغاز کروا. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں تیرے دین کی آوازیں آنے لگے. اور یا اللہ ہمیں باقاعدہ بیٹھ کر سیکھنے والا بنا. چلتے پھرتے تو کوئی کام نہیں کرتے, صرف تیرا کام ہی, تیرے دین کو سیکھنے کو ہی ہم چلتے پھرتے کا کام سمجھے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما, دعاؤں کے یہ خزانے قائم رکھنا. اور یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما, ہمیں ان کے لیے بہترین عمل کرنے والا بنا. یا اللہ ان کو اب ہماری طرف سے دعاؤں کے تحفے اور صدقہ جاریہ کے تحفے ملیں گے. یا اللہ ہم سب کے فوت شدگان کی بخشش فرما. یا اللہ اس گھر کے جو بڑے تیرے پاس چلے گئے ان کی بخشش فرما. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدل دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعصہ من عذاب النار. یا اللہ ہم سب کو جب تم سے راضی ہو تب اپنے پاس بلانا, اور ہماری قبروں کو نور سے بھر دے. زندگی میں قرآن کا نور ہماری زندگی میں آ جائے, سنتوں پہ عمل آ جائے. اور یا اللہ ہماری قبروں کو نورانی بنا, ہمارے استادوں پہ رحم فرما. اور یا اللہ ہمارے شوہروں کو دین اور دنیا میں ہمارے بہترین معاون بنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ خیر. آن لائن ساتھی پوچھ رہے ہیں ٹائمنگز کا, تو میرا خیال ہے کہ اب سے لے کے 2 گھنٹے کے بعد, ٹھیک ہے, روم تو کھلا رہے گا, اس میں لیکچرز بھی پلے ہوں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب ٹائم دیا ہوا جو بھی, تو اس میں شروع میں 10-15 منٹ تو اسی طرح کے ایڈجسٹمنٹ کے ہی ہوتے ہیں, اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارا مین لیکچر شروع ہوگا. جزاک اللہ خیر سسٹرز, آپ کا بھی سیریز لائیں آپ ان کے لیے. جی آن لائن پہ کوئی مائک ہولڈ کرنا چاہے تو لے لے. اور یہ ہمارے پاس صدقہ جاریہ سیڈیز ہوتی ہیں, اسی سوچ سے بنواتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چیز کو نہیں سیکھا سنا, تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ لوگ خود بھی لیں اور سن کے دوسروں کو دیں. آپ کا دل چاہے کہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی اس میں ڈال سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو سنیں اور دوسروں کو دیں, شاید ایک سی ڈی کسی کی زندگی بدل دے ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر شام کو جن جو ساتھی آئیں گے ان سے ملاقات ہوگی. کل 2 درس ڈبلن کے, اگر آپ میں سے کوئی خود جا سکے یا وہاں اگر کوئی آپ کے جاننے والوں میں, تو ان کو بتائیں تاکہ وہ پہنچے. اور یہ سارے لنک اس وقت روم میں یہ لوگ دے رہے ہیں, اور جو یہاں والے ساتھی ہیں وہ سسٹر نبیلہ اور باقی لوگوں سے جن کو پتہ ہے پوچھ لیں کہ کل ڈبلن کے 2 درس کہاں پہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن سے کچھ لے کے شیئر کرنا چاہے تو پلیز موسٹ ویلکم.
ربنا